शैतान रजीम, आप लोग अगली चेयर्स को फिल अप करें और तिलावत सुनते हैं। बिल्कुल आप अपने जहन को खाली करके इंशाल्लाह तिलावत सुनते हैं।
فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم.
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलिए शुरू करते हैं। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। बराह-ए-रास्त तफ़सीर पे जाने से पहले आज के सबक का खुलासा, और हम देखेंगे कि पिछली आयात से इसका क्या रब्त है। हम देख रहे हैं कि बज़ाहर देखने में इन आयात के अंदर बहुत फीलिंग आती हैं कि बहुत मुख्तलिफ मौजू हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं हर चीज़ को, तो हमें ऐसा लगता है कि एक लड़ी की तरह पिरोई हुई है। पीछे से हम एग्जाम बिर में उम्मत वसत के लिए जो अहकामात की ज़रूरत थी उसको पढ़ते आ रहे, जिसमें रोज़े के, नमाज के, हज के, क़िताल के, क़िसास के और वसीयत के अहकामात के बाद जब यहाँ पे किस्सा शुरू हुआ खानदानी जिंदगी का, तो पिछले सबक में हमने देखा कि निकाह की बात शुरू हुई कि जिसमें ये बताया गया कि एक औरत और मर्द का जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट है वो आने वाली नस्लों के लिए भी अहम है, और उनके उसमें अल्लाह ताला ने जो एक हद रखी जिस पे हम एंड पे बहुत थोड़ा बात कर सके, लेकिन अगर हम उसी बात को अपने आज के सबक की बुनियाद बनाएं कि पिछले सबक का आखिरी हुक्म क्या था कि वला तन के हुल मुशरिकाति हत्त युमिन्ना, कि मुशरिक औरतों से निकाह नहीं करना यहां से लेके अब, عورتوں کے حقوق کا تذکرہ ہے. آج دنیا میں بہت غوغا ہے, ویمن رائٹس کی بات کی جاتی ہے, عورتوں کی بات کی جاتی ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کی بات اس لیے کر دی کہ کسی معاشرے کے اندر امن اور چین تبھی ہوگا کہ جب سب کو برابر کے حقوق ملے. برابر سے مراد ایکویلٹی نہیں ہے, بلکہ برابر سے مراد اس کی استطاعت کے مطابق ہے. یہاں پہ ایک دم آج کے ہمارے سبق میں پیریڈز یعنی حیض کی بات ہوگی. بظاہر بالکل بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیا بات ہے کہ ہم تو اتنی بڑی کتاب پڑھنے بیٹھے اور اتنی پرسنل چیز, اور وہ بھی صرف عورتوں سے ریلیونٹ ہے, اس کا تذکرہ. تو سمجھ لیجئے گا کہ یہاں پیریڈز کی جو بات ہے یہ طلاق کا انٹروڈکشن ہے, کیونکہ پیریڈز کے ساتھ طلاق کا بڑا گہرا تعلق ہے. انشاءاللہ جب وہ موضوع آئے گا تو وہاں ہم بات کریں گے. پیچھے شوہر اور بیوی کے تعلق کے اندر جو شرط لگائی گئی تھی کہ ایک دوسرے کے دین کو اور مزاج کو سمجھنے والے ہوں, اس لیے ایک مشرک اور ایک مومن کا جوڑ نہیں بنتا. بالکل اسی طرح شوہر بیوی کے تعلقات میں اگر آپ اعتدال لانا چاہتے ہیں تو پھر اس میں عورتوں کے ساتھ ایک خاص ایک ایسی تکلیف جو اللہ تعالیٰ نے بلوغت کے ساتھ رکھ دی, وہ جڑ گیا کسی بے دین سے اور بے نمازی سے. اور دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ اگر ایک مسلمان بچی کی شادی نان مسلم مرد سے ہو جاتی ہے, جو اللہ کو نہیں مانتا, اللہ کو نہیں پہچانتا, وہ پھر نفس پہ غلبہ کیسے پائے گا؟ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیسے وقتوں میں ہو سکتا ہے کہ وہ اس عورت کے لیے خوشی کا ذریعہ نہ بنے؟ آج کے سبق میں سب سے پہلے جو پیریڈز کی بات ہو رہی ہے, تو دور جاہلیت میں اس معاملے پر جو افراط اور تفریط تھی اس کے جواب میں یہ سوال صحابہ کے ذہن میں آیا تھا جس کا انہوں نے پوچھا گیا تھا. اور آپ دیکھیے کہ دنیا میں اگر ایک عمومی اندازہ بھی لگا لیا جائے تو اکثریت عورتوں کی ہے. یہ تو ایک بات آپ کو اپنے گھروں میں بھی دکھے گی کہ بیٹے کم ہیں لوگوں کے اور بیٹیاں زیادہ ہیں, گو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل نظام تو رکھا ہی ہوا ہے, لیکن جب عورتوں کی تعداد بھی زیادہ ہے اور ان عورتوں میں سے ایک بیشتر حصہ جو ہے وہ ہر وقت اس تکلیف کا شکار رہتا ہے, تو وہ کتاب جو لوگوں کی ہدایت کے لیے اتری تھی بہت ضروری تھا کہ اس میں اس موضوع کو بھی ٹچ کیا جاتا. یہ واحد مقام ہے قرآن پاک کا کہ جہاں عورتوں کے اس موضوع کو چھیڑا گیا. اس کی ساری تفصیلات ہمیں حدیث سے ملتی ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم جب اس آیت کے اوپر آتے ہیں تو تھوڑی سی اس پہ ڈیٹیل سے بات کر لیں گے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس آیت کے اندر ہلکا سا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالی نے عورت اور مرد کے تعلق کی لمٹس بتا دی کہ عورت اور مرد کے تعلق میں فطری رنگ غالب ہونا چاہیے. کسی کو یہ نہیں بتانا پڑا دنیا میں آنے کے بعد کہ انسان کھانا کہاں کھائے گا, منہ میں نوالہ ڈالتا ہے بچہ بھی. اسی طرح سے فطرت کی کچھ چیزیں ہیں جو ہم سب کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. تو یہ شوہر اور بیوی کے تعلق میں, آدم اور حوا جب شوہر اور بیوی کے طور پہ اس دنیا میں آئے تو اس وقت کوئی شریعت ان کے سامنے نہیں تھی کہ جس میں ان کو بتایا جاتا کیا جائز ہے کیا نہیں جائز. نہ اللہ تعالیٰ نے کوئی پہلے سے بتایا, بلکہ فطرت نے جو طریقہ سکھایا, جیسے ایک بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کا دودھ لے لیتا ہے, اس کو کوئی سکھاتا نہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے جسم کے جو مختلف آرگنس رکھے ہیں ان کا کچھ کام ہے, منہ میں کھانا ڈالتے ہیں, آنکھیں دیکھتی ہیں. اسی طرح انسان کے پرائیویٹ پارٹس جو ہیں جسم سے گندگی کے نکلنے کے راستے بھی ہیں, اور انسان کی اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی بقا کے لیے اس کو رکھا. یہ سوال کبھی کسی نے نہیں اٹھایا کہ ہمیں یہ کون بتائے گا, یہ فطرت کے استاد نے بتا دیا تھا. لیکن جب وقت کے ساتھ ساتھ فطرت پرورٹ ہو جاتی ہے, جب لوگ اللہ کے دیے ہوئے نظام زندگی کو پیچھے ڈال کر شیطان اور شیطان نما چیزوں کو فالو کرنے لگتے ہیں, تو اس میں گڑبڑ ہونے لگتی ہے, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دور میں جبکہ دین کی کا آغاز تھا کھول کے بیان کر دیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے, تمہاری لمٹس کیا ہیں, اور تمہیں اپنی بیویوں کو اپنے پاؤں کی جوتی نہیں سمجھنا اور نہ ان کو سر پہ چڑھانا ہے, بلکہ وہ صاحب بل جنب ہیں. سورت نساء میں ہم پڑھیں گے, یعنی تمہاری کروٹ کی ساتھی ہیں, یعنی بالکل ایکول ہیں تمہارے. کچھ باتیں حقوق اور ذمہ داریوں کے اعتبار سے فرق ہے. پھر اس میں خاص طور پہ آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ کیا عورت واقعی ایک شو پیس ہے. एक मर्द उसको देखता रहे तितली की तरह और चांद की तरह उस पर शेर पड़ता रहे, या फिर शौहर बीवी के लिए कुछ ना कुछ इस तरह की जिम्मेदारियों के हामिल हैं कि जिसको पूरा करने के बाद ही वो उनसे फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद आप कह सकते हैं कि आयत नंबर 225 से बाकायदा तौर पे तलाक का मौजू शुरू होता है, और तलाक के मौजू में सबसे पहली जो किस्म हम आज पढ़ेंगे वो ईला की है, यानी नाराजगी की हद इतनी कि शौहर अपनी बीवी से ताल्लुक कायम करने की कसम खा ले। उसके बाद आयत 227 और 223 जो है 228 जो है इसके अंदर तलाक के नाते से इद्दत की कुछ बातें हैं, लेकिन असल तलाक का मौजू कल शुरू होगा अगले सबक के साथ। तो ये थोड़ा सा रब्त था, और आज के पूरे सबक को पढ़ते वक्त आपको यकीनी तौर पे इस पे दिल की गहराई से यकीन होगा कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे औरत भी बनाया और तूने मेरे हकूक का दिफा किया। मैं कह सकती हूँ कि दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पे अगर विमेन राइट्स पे बात करनी हो, आज का सबक बेहतरीन है कि इस्लाम ने तो वो हक भी दे दिया जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि औरत को दिया या लिया जा सकता है। तो आइए अब आयतों को साथ लेकर चलते हैं, और इसमें से इंशाल्लाह अमल की बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती जाएंगी। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस पे अमल करने वाला बना दे। आयत नंबर 222, वयसअलूनका, और वो आपसे सवाल करते हैं। कौन करते हैं? लिखिए, सहाबे कराम करते हैं। किससे करते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। सवाल क्या था? अनिल महीद, हैज के बारे में। सहाबा का सवाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैज के बारे में था। बस इतनी बात कह के बात खत्म कर दी। ये कुरान का खूबसूरत अंदाज है। अमल की बात नोट करें कि बास दफा इस किस्म के सवालात पूछने पड़ते हैं, क्योंकि हलाल और हराम का फर्क है, हदूद है, कैयूद है, लेकिन बास दफा लोग शर्म हया की बास दफा से बैरियर होता है बीच में, और कुछ और वजूहात है। और दूसरी तरफ एक एक्सट्रीम क्या है कि इन्हीं बातों को मौजू सुखन बनाया जाए। बच्चियां आपस में बातें कर रही हैं, सहेलियों में बातें हो रही हैं, खाला भांजी में ये बातें हो रही हैं, दोस्त दोस्तों में अपनी बीवियों की बातें शेयर करते हैं। ये दोनों बातें नापसंदीदा हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी बातें जो पर्दे की हैं, छुपी हुई बातें, इसको सरेआम नहीं खोलना चाहिए, वरना तो फिर देखिए दरवाजे क्यों बनते और खिड़कियां क्यों बनती और पर्दे आगे क्यों लगते। तो इसके लिए अगर आज भी किसी ब्रदर को इस मौजू पे कोई बात हो जिसमें थोड़ा सा शर्मो हया का मामला हो, तो तरीका क्या होता है कि अपनी बात के अंदाज से और तहजीब के दायरे में रहते हुए किनायतन, किनाया किसको कहते हैं, इशारतन, यानी लपेट के बात कर देनी कि बात अगले को तो समझ आ जाती है लेकिन दूसरों को हो सकता है उतनी खुल के समझ ना आए, तो इस तरह से बात पूछ लेनी चाहिए। सहाबा ने पूछा, औरतों का मसला, हाँ जी, इसलिए कि उन्होंने अपनी बीवियों के नाते से पूछा था। अब सवाल पैदा होता है क्यों पूछा, मैं साथ ही तफसीर करती हूँ, फिर आगे जवाब दूंगी कि अल्लाह सुब्हान तआला का जवाब क्या है। तो जिस दौर में कुरान नाजिल हो रहा था, सहाबा कराम के पास मक्का में मुशरिकीन थे। मुशरिकीन चूंकि अल्लाह और अल्लाह की जात को पीछे डाल चुके थे, मन मौजी दीन बन चुका था, उनके पास अल्लाह तला की रहनुमाई जो थी वो गुम चुकी थी। उनके पास अपनी बीवियों के लिए कोई खास रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं था, जिसका जो दिल चाहे कर लो, यानी जिसको आप कह ले नो सिन नो बेनिफिट। दूसरे यहूद, जो नबी सल्लम के बिल्कुल करीब के लोग थे, जिनको आप कह सकते हैं कि मदीना में आपका मुकाबला मामला उनसे पड़ा, यहूद के उलमाए कराम दीन की जाहरी चीजों में बहुत स्ट्रिक्ट, जिसको आप कह लें कि वो ऊपर का क्रस्ट उन्होंने दीन का इतना सख्त किया कि पीरियड्स के दिनों में औरत को अछूत समझते, उसके हाथ का खाते भी नहीं, पीते भी नहीं, बल्कि बाज जगह तो यहां तक आता है कि उस औरत जगह पे छोड़ दिया जाता कि जहां से वो किसी काम की ना रहती, और बाद में उसको वापस बुलाया जाता। औरतें अपने आप को एक किस्म के गिल्ट में ले जाएंगी, उनको फील होगा कि हम इतनी गंदी हैं, हम इतनी नापाक हैं। ठीक है, तीसरा गिरोह जिससे फिर कुछ अरसे के बाद नबी सल्लम और सहाबा का वास्ता पड़ा, वो क्रिश्चियंस थे। नजरान की बस्ती जो मक्का और मदीना के अराउंड, पीछे आप थोड़ा आगे जाएं तो वहां से कुछ नसरानी भी आए, यानी कुछ इंटरेक्शन मुसलमानों का उनसे भी हुआ। क्रिश्चियंस में पीरियड्स में औरत से ना सिर्फ ये कि खाना पीना रहना जायज था, सीधे हाथ से पीछे, और अब कोशिश करें कि ना पिए, ठीक है, ब्रेक के बाद पिए, क्लास के बाद गर्म करके पिए। स्टूडेंट्स के हाथ में नहीं अच्छी लगती चाय, मैंने तो अपनी उठा के पी के रख ली, ठीक है। मैंने बोलना होता ना, सिर्फ इसलिए पानी रखती हूँ कि मुझे गला ना खुश्क हो मेरा, ठीक है। बहरहाल, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप देखिए कि सहाबे कराम क्रिश्चियंस का मामला क्या था, कि वो एक तो यहूद की चिड़ में कि चूंकि वो बड़े सख्त हैं तो हम नरम दीन पेश करें, नंबर एक। दूसरा, क्रिश्चियंस में ख्वाहिश नफ्स की बड़ी इतबा है। आप कह लें कि ज्यूज अल्लाह के खौफ में हद से बढ़ गए, ठीक है, जिसको आप कहना चाहिए कि ऑन द सेफ्टी साइड। क्रिश्चियन इसे ऑपोजिट है, वो कहते हैं लव ऑफ अल्लाह, लव ऑफ अल्लाह, जीसस गॉड, आई लव यू, आई लव यू कहते जो बात एक भी ना मानो, उनका रवैया खराब। फातिहा से देखते आ रहे हैं अद्दालीन और मखदूब में। दालीन वो होते हैं कि जो इल्म ही नहीं हासिल करते, सिर्फ खुशी और ख्वाहिशों और खुशफहमियों में जन्नत में जाना चाहते हैं। मखदूब वो होते हैं जो इल्म तो हासिल करते हैं लेकिन इल्म की हद तक, और वो अमल नहीं करना चाहते। अब ये दो एक्सट्रीम्स थी, बात वाज़ह। और खास तौर पे सहाबा के अंदर तो यहूद का असर ज्यादा हो सकता था, करीब थे। इसी तरह जब सहाबा कराम हिजरत करके मक्का से मदीना गए, ये एक तीसरी वजह भी नोट कर सकते हैं आप लोग, मक्का में गए तो शादियां हुई, मदीना में गए तो मदीना की लोकल औरतों से शादियां हुई, और उस दौर में दूसरी तीसरी शादी कोई बड़ी बात नहीं थी, शादियां भी एक से ज्यादा होती थी और तलाक की सूरत में दोबारा शादी भी उस औरत की होती थी। सहाबा कराम जब उन औरतों के साथ अपने ताल्लुक के कायम करने में अल्लाह की जायज हदों को कायम करने लगे तो उन औरतों ने उनको रोक दिया, क्योंकि यहूद ने एक मिथ बना ली थी कि एक खास पोजीशन के अंदर जब औरत से ताल्लुक कायम किया जाता है तो बच्चा भींगा पैदा होता है। यानी ये वही बात है जिसको आप कहें कि हर सोसाइटी के अंदर कुछ जिस बातें थी, जैसे हमारे कल्चर में बहुत सारी हैं, ये ना करो वो ना, दिस एंड दैट। अब सहाबा किराम परेशान हो गए कि हम तो अल्लाह के हुक्म से कर रहे, ये ताल्लुक कर रहे हैं, औरतों ने उनको मना कर दिया कि नहीं ये तो गुनाह की बात है। इस किस्म के बहुत सारे सवाल जब जहनों में उठे तो सहाबा ने फिर खुद ही नहीं कहा जिसका जो दिल चाहता कर लो, चलो जो समझ आता कर लो, वो सीधे मेन सोर्स पे पहुंचे। ये है खूबसूरत मिजाज, खास तौर पे ऐसे अहकाम जिन अहकाम में इंसान का नफ्स गलती खाता है तो उस पे किसी अल्लाह से डरने वाले साहब इल्म से बात पूछ लेनी चाहिए। ख्वाहिशों के हरीस से पूछेंगे तो लोग आपको आज ही की आयतों में से ओरल सेक्स भी जायज करके दिखा देंगे, एनल सेक्स भी जायज कर दिखा देंगे, वो आपको होमोसेक्सुअलिटी भी जायज कर देंगे। इन्हीं आयतों में से की है लोगों ने, लफ्जों में इशारा कर दूंगी जहां बात आएगी। तो सहाबा ने अल्लाह के नबी से सवाल किया, और याद रखिए कि कुरान ने हर मसले का हल पेश किया, हम कहते हैं ना इशारतन किया है या तफसील से किया है लेकिन किया है। और हैज उम्मत मुस्लिमा की औरतों का एक बहुत बड़ा इशू था, और उनके नाते से सहाबे कराम का ये मसला था, तो अल्लाह ताला ने अब जवाब क्या खुदा अजन। देखिए दो लफ्ज हैं, कुल कह दीजिए, ये तो अल्लाह के नबी को कहा ना, क्या कह दे हुआ अजन, ये गंदगी है, ये नजासत है। लफ्ज अजन, जैसा कि लफ्जी वजाहत में आपसे जिक्र किया गया कि अजन का लफ्ज जो होता है ना, या तो गंदगी के लिए आता है, नजासत, हम सब जानते हैं कि ये दिन नजासत के होते हैं। कैसे? जिस्म का गंदा खून औरत के जिस्म से निकलता है, अल्लाह ताला ने एक फितरी तौर पे औरतों के जिस्म के अंदर एक ऐसा एक्सक्रीशन निकालने एक्सक्रीटरी सिस्टम रख दिया कि सारा महीना जो जिस्म के अंदर तोड़ फोड़ होती है, सेल्स बनते हैं, सेल्स टूटते हैं, बाहर से जरासीम जाते हैं, हमें इर्द गिर्द से कुछ मिलता है, कुछ हमारे जिस्म में ऐसे एसिड उठते रहते हैं, वो सारा महीना खून में जमा होते रहते हैं। ये सबके साथ होता है, औरत के साथ भी, मर्द के साथ भी, कि वो गंदगी जब जिस्म के अंदर रहेगी तो नतीजा क्या होगा कि इंसान के जिस्म में सख्ती आएगी। अल्लाह ताला चाहते हैं कि औरत नरम और नाजुक रहे, तो एक फितरी तौर पे 10-12 साल, अमूमन 10 से लेके 14 साल की उम्र में ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो उस वक्त फिर जिस्म से, जैसे जिस्म से दूसरी गंदगी आती है, कोई इसमें खाखू की बात नहीं है, हमारे यहाँ इसको बहुत बड़ा बाज दफा एक हंसने का और छिछोरपन का तरीका बना लिया जाता है, किसी को कुछ भी इसमें कोई कॉन्शियस करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर ये मामला जब हो जाए तो इस नेचुरल सिस्टम जिसम से और गंदगियां दिन में एक दो बार नहीं निकलती क्या, तो ये ऐसी चीज है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि हुआ अजन, गंदगी सारी निकल जाती है औरत के जिस्म में। अल्लाह सुबहाना ताला ने एक ऐसी खूबसूरत सी जगह रखी हुई है जिसको आप यूट्रस कहते हैं, रहम है, उसकी ख्वाहिश क्या है बीबी कि उसके अंदर बच्चा आए, सिंपल सी बात है। यानी मैंने दोबारा कुरान में भी इशारत जिक्र किया था, आएंगे 10-12 साल की उम्र में ना ये ख्वाहिश होती है ना इसकी जरूरत पड़ती है। अगर एक औरत बच्ची जब बालिग होने लगती है, फितरी तौर पे हर महीने औरत का बच्ची का वो जिस्म मांगता है मेल स्पर्म, इसी को आप उसके अंदर वो जज्बात को उभार कहते हैं। इसी के साथ बंदे की सोचें बदलने लगती हैं, मर्दों में भी चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं लड़कों में इस उम्र में। तो अगर तो मेल स्पर्म मिल जाता है तो वो बच्चे के रहने का एक टेम्परेरी सा 9 महीने के लिए एक छोटा सा इंक्यूबेटर बन जाता है। अब ये तो नहीं होता, अमूमन हमारे कल्चर में भी नहीं होता कि 10-11 साल की उम्र में पीरियड्स के साथ ही शादी कर दी जाए। अब होता क्या है कि जब उसको उसकी डिजायर्ड थिंग नहीं मिलती तो वो जो यूट्रस की दीवारें हैं वो टूट जाती हैं। असल में ये जिस्म के अंदर से कभी किसी को क्लॉटिंग होती है, कभी आपने सुना हैवी ब्लीडिंग है, ये वो यूट्रस की साइज के बराबर होता है, छोटा है बड़ा। और इसमें और लड़कियों की सोचों का बड़ा गहरा ताल्लुक है। अब यहाँ ये बात इतनी डिटेल से हम नहीं करेंगे क्योंकि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एस सुन एस आपकी किताबो तहारा शुरू होगी, उसमें ये मौजू आएगा और आप डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन हम सिर्फ यहाँ लफ्ज अजन पे बात करें तो अकल दंग रह जाती है कि जिस वक्त ये कुरान नाजिल हो रहा था किसी को ये फिनोमिनन पता था, लेकिन अल्लाह ने बता दिया ये गंदगी है जिस्म से निकल जाती है, फिर औरत प्लेन प्योर होती, फिर पूरे 28 दिन के साइकिल में दोबारा वो वॉल्स बनती हैं और फिर वही प्रोसेस होता है। वो ना उसको मिले स्पर्म तो वो फिर टूट जाती हैं, ये प्रोसेस चलता रहता है अनलेस के जब फिर ये बात शादी के बाद पूरी हो जाती है और वहां पे पीरियड्स रुक जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से इसको अजन कह के अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये थोड़ी सी गंदगी के दिन है। इसी तरह आप देखिए कि लफ्ज अजन का दूसरा मानी क्या है, तकलीफ। इसमें तकलीफ कहकर अल्लाह ताला ने औरत के हकूक की क्या कहते हैं कि औरत के हकूक की तर्जमानी की है। चूंकि जिस्म में इतनी बड़ी तब्दीली आती है, आप खुद सोचें उंगली में कट लग जाए तो बाद दफा उसकी कटाव की वजह से सारा सारी बाजू खिंच जाती है ना। एक कट कहीं जिस्म में लगता है, खून का कतरा निकले तो वीकनेस है। तो जब औरत इतने प्रोसेस से गुजर रही है तो उसको तकलीफ भी होगी, और अगर उस तकलीफ में शौहर उसके साथ कोई तकाजा करता है जो उसको फर्दर किसी भी तकलीफ के दिन है, तो गोया के इसमें अल्लाह सुबहाना ताला ने ये बता दिया कि औरत के लिए भी तकलीफ है और देखा जाए तो मर्द के लिए भी तकलीफ है। उसको एक खास हद तक सब्र करना पड़ता है, ताल्लुक कायम नहीं कर सकता। और अल्लाह सुबहाना ताला ने शोहर बीवी को जोड़ने के लिए ये जो ग्लू बनाई है ना, इसकी वजह से घर कायम रहते हैं। लेकिन आज जब हम इस सिस्टम में खराबियां देखते हैं ना, उसकी वजह क्या है? देखिए यहाँ अब मैं ना दूर जाऊं तो बेहतर है, हम इसी पे रहें, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि जो खराबियां आज आज के दौर में है, और यकीन करें कि अगर आज कुरान नाजिल होता तो जो इर्द गिर्द हम खराबियां देख रहे हैं वो इसमें आती हैं। मैं सिर्फ इशारतन जिक्र करूंगी, आप फिर बाद में समझे ना समझे। अब शौहर बीवी शादी के बाद साथ रहते हैं, कोई बात अच्छी लगती है कोई बुरी लगती है। कोई आप में से कह सकता है कि हमें अपने शौहर की कभी कोई बात बुरी नहीं लगी और ना उनको लगी होगी, रहती है ना। 10 बातें भी बुरी अच्छी लगती हैं, कभी आप खुश कभी वो खुश, कभी उन्होंने आपकी नहीं मानी, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन जब वो साथ रहते हैं ना, तो अल्लाह ताला ने ये कैसा ताल्लुक रखा है कि वो सब गुस्सा गम गलत खत्म हो जाता है। एक बंदे को पता है आप उसकी जरूरत है, आपको पता है उसकी जरूरत है। लेकिन जब शादी से पहले, अब मैं बड़ी मुख्तात बात करना चाहती हूँ, मैं शादी से पहले को मंगनी के बाद कह दूं तो आप लोग माइंड ना करें, जब लड़कियां मंगनी के बाद ही लड़कों से बातें शुरू कर देती हैं जहां उनका फिर यकीन नहीं होनी है, 2 दिन पहले भी रिश्ते टूट जाते हैं शादी से, ठीक है ना। मैं दूसरों की तो बात ही नहीं करती, वो तो इतनी अबस बात है कि जिसका जिक्र इधर लाना भी बेकार बात है। मैं सिर्फ बात करूंगी कि मंगेतर से जब लड़कियां बातें शुरू, फोन पे मान लेते हैं कि वो गंदी बातें नहीं करती, वो सेक्सुअल बातें नहीं करते, वो इंटीमेसी की बातें नहीं करते, फिल्मों गानों की नहीं करते, ख्यालात का इजहार, कहते क्या हम एक दूसरे को समझ रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अस, अब खुलेगा ना बंदा। अब आप देखिए कि ये ड्राइंग रूम मैनर्स होते हैं जो हम बाहर में दो दो एक दो घंटे में लोगों को मिलते हैं, चाय पिए खाएं आप पी लें प्लीज हाय सो, वो कहेंगे आंटी आप कितनी स्वीट हैं, वो कहेंगे अंकल आप कैसे हैं, फुल खत्म। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में है ना कुछ चीजें हम सब में, अब वो लड़के को लड़की की पता चल जाती है और लड़की को लड़के की पता चल जाती है, ये बहुत इनसिक्योर है, मिसाल है। ये बहुत टची है, ये बहुत क्यूरियसिटी रखती है, ये मेरी बड़ी खबर रखती है, सुनते हैं आपकी कहानियां। अब होता क्या, ये बॉन्डिंग चीज नहीं है जिसका यहां तक जिक्र है। तो फिर मंगनी से बाद शादी से पहले लड़का कहता है आई डोंट थिंक सो के शी क्लिक्स मी। बात वजह ये है मसला, अल्लाह ने ये एक ऐसा ताल्लुक रखा है कि सारे झगड़े आके एंड पे खत्म भी हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, इट्स फाइन, इट्स अपना खत्म। तो जब हम गैर फितरी तरीके से ताल्लुकात को हवा देते हैं ना, माँ बाप क्या सोचते हैं कि लड़के लड़की की अंडरस्टैंडिंग होगी, गलत है। एक तो वजह ये तो बता दी, दूसरी ये कि वो मंगेतर है, वो शौहर नहीं है। फियोंसी इज अ डिफरेंट स्टोरी, हस्बैंड इज अ डिफरेंट थिंग। आज आप उसकी दोस्त बन के बात कर रही हैं, कल आप उसकी बीवी होंगी। तो यहां से जितना बोझ है ना, शायद आप पे नहीं होगा। कोई स्टेशन, कोई दिन, कोई महीना खाली नहीं जाता जब ये इश्यू। अब तो लोग बात शुरू करते हैं ना, मैं कहती हूँ ठीक है वक्त कम है, मैं आपको बताती हूँ आगे आपने क्या कहना है, इसका हल ये। वजह क्या है कि हमने फितरत को तोड़ दिया, ठीक है। तो आज के दौर में इन सारी चीजों से बचने का एक ही हल है कि इस्लाम की छत के नीचे आ जाओ। आधे तीतर आधे बटेर नहीं, उदखुलू फिस्सिल्मी काफा। बहरहाल ये बात करके आगे वापस चलते हैं। फातज़िलुन निसा फिल महीद, अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि इनको कह दो कि औरतों से हैज के दिनों में और हैज की जगह। आप देखिए ये कितना किनाया है इसमें, सुभान अल्लाह। मैं कहती हूँ इससे खूबसूरत तरीके से कोई पेश ही नहीं कर सकता दुनिया का कोई इंसान, ये रब का कलाम है। एक लफ्ज अल महीज बोल के दो चीजों से रोक दिया, और इसमें दो हुक्म है अलग। नंबर एक, औरतों से अलग हो जाओ। पहली बात समझे फातज़िलु को, यहां अलग रहने से मुराद इंटरकोर्स है। ये नहीं कि अलग होने से मुराद घरों से अलग, कमरों से अलग, शहर से अलग। आज आपको पता है कि ऐसे मुआशरे हैं खासतौर पे जहां दीन नहीं होता, वहां इस तरह के तोहम बहुत होते हैं। बस ऐसे अपने हमारे मुल्कों में काफ्रिस्तान और ऊपर ऐसे इलाके हैं जहां उन्होंने ऐसे घर, बड़े बड़े कमरे बनाए हैं, और कहते हैं उसको बड़ा हॉरर सा बनाया होता है, दीवारों पे खतरे का निशान और वो जिन और ड्रैकोला जो ऐसी ऐसी शक्लें होती हैं। और करते क्या है कि जो ही कोई लड़की औरत पीरियड्स में आती है उसको उधर भेज देते हैं ना, शक्ल देखनी, और घर का कोई बच्चा जाके उसको रोटी दे आता है कि खा लो और देखा जाए। एक तरफ से तो औरतों की मदद से वो कितनी साइकिक हो जाएंगी। आप कोई कहते हैं ना कि इस प्लेट के अलावा आपने किसी को हाथ नहीं लगाना आपकी ये है, तो कितना आएगा क्यों मैं नापाक हूं, नापाक समझते हैं। ऐसा नहीं है, तुम उनसे खास ताल्लुक से रुको, और यही हुक्म है, सिर्फ रुकने की जगह। दिन उन दिनों में 10, 6, 8, 5 जितने भी दिन है पीरियड्स के, इसकी कोई हद नहीं है। हमारे यहाँ इस पे बहुत अफहम तोहम प्रस्ती है। कोई कहता है जी इसकी एक हद है, पाक भी हो चुके होते हैं फिर भी नमाज नहीं शुरू कर रहे होते, क्यों नहीं कर रहे होते कि जी अभी दिन पूरे नहीं हुए, गलत है। और बाज दफा 15, 20, 20 दिन चलता रहता है, कहते हैं अभी खत्म नहीं हुए, इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन चूंकि देखिए ये आपकी नमाजों और रोजों का ताल्लुक है, तो इस्लाम ने इसके ऊपर इंसान को बहुत ही क्लियर कट बात की है। एक चीज है भैंस और दूसरी है इस्तहाजा। हैस कुछ है, इस्तखाजा कुछ है, लेकिन आदत के खिलाफ कोई भी अगर ऐसा ब्लड है जो इरेगुलरिटी है, पहले तो उसको ठीक करें। आज के दौर में ये मसाइल भी बहुत ज्यादा है, और उसकी वजह लड़कियों और औरतों का एटमॉस्फेयर है। हर तरफ इंटीमेसी, 4-6 लफ्ज ही तो दोहराए जाते हैं, कहीं लव है तो कहीं रोमांस है तो कहीं सेक्स है, कहीं नाचते हुए दिल दिखाते हैं। अब जब दिल फेंक सोसाइटी, और लड़की लड़के साथ बैठ रहे हैं, कोई बसों में इंट्रेक्शन है, चीजें वो देखनी, तस्वीरें वहर वो हैं, तो जाहिर है कि वो कह लें कि फितरत का निजाम अंदर हलल मलल होता है। बच्चियों को तो एक ही नसीहत करूंगी कि आप अपने ऐसे हर मसले से बचना चाहती हैं तो अपनी निगाहों को पाक रखें, अपने दिल को साफ रखें, कसरत से रोजे रखें। अल्लाह के नबी ने मर्दों को भी ये हुक्म दिया कि जवानी के बावजूद अगर शादी नहीं हो रही तो रोजा रखो, ये तुम्हारी शहवत को ठंडा करेगा। मत देखें वो चीजें, मत वो बोल बोले, मत वो चीजें देखें कि जिससे आपका अपना सिस्टम खराब है, और तकलीफ सारी आपको होगी, किसी दूसरे को तो नहीं होगी। तो यहां पहली चीज महीज की हमने देख ली कि उन दिनों में औरत से एक खास ताल्लुक ना रखो, ये बात हो गई। दूसरे महीज में वो जगह, यानी औरत के लिए, मर्द के लिए औरत की जो चीज हराम है वो जगह है जहां से ब्लड आता है। अल्लाह के नबी सल्लम की सीरत को पढ़े बगैर आप ये मौजू समझ नहीं सकते। कुरान ने तो इतना कह के आपको आगे ले जाना है। जो लोग हदीस को नहीं मानते वो साबित करें कि औरत हैज में नमाज ना पढ़े, कुरान में नहीं है। हजरत आयशा फरमाती हैं कि पीरियड्स में नमाजें छूटती थी तो हम उसको दोबारा दोहराते नहीं थे, लेकिन जो रोजे छूटते थे वो हम रखते थे। कहाँ मसला, ये कुरान में कहीं नहीं है। और आज वो गिरोह जो हुज्जियत हदीस का इनकार करता है वो कहता है पढ़ो नमाजें। मैंने खुद एक जगह गई और बात हुई और उन्होंने कहा कि नहीं औरतें पढ़े नमाज, कुछ नहीं होता, आजकल औरतें पाक हैं, कुछ नहीं गंदगी फैलती। ये वही बातें हैं जैसे भी आजकल पे हलाल है खा लो, कुछ नहीं क्योंकि गंदा नहीं रहा। तो कुछ तो हाल यह है कि वैसे नमाजें नहीं पढ़ते, और कुछ एक्सट्रीम में ऐसे भी हैं कि वो हैज में भी औरतों को नमाजें पढ़ाते हैं। हालांकि देखिए ये विमेन राइट में कितना बड़ा राइट अल्लाह ने दे दिया कि एक औरत पहले तकलीफ में है, बीमारी के ज्यादा करीब होती है, मिजाज में चिड़चिड़ थोड़ी सी रुख्सत दे दी, कोई बात नहीं, टेक इट इजी, बाकी दिनों में नमाजें पूरी करो, तुम्हें इन पांच का भी अजर मिल जाएगा, सुन्नत नफिल कसरत से पढ़ो। तो यहाँ उस जगह की बात है। अगर आप इस मौजूद को समझना चाहते हैं तो अल्लाह के नबी का अपनी बीवियों से ताल्लुक, प्रॉफिट एट होम, प्रॉफिट अपनी बीवियों से। आप अगर चाहें तो बल्कि होमवर्क ही ले लें, रहबरे कामिल सीरीज में से आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप एक शौहर के नाते से इस टॉपिक को सुन लें, आपसे लेके मंडे तक आप लोग सुन लें। ये डाल दें इसमें असाइनमेंट में भी और लिख के इनको लिंक भी दे दीजिए, ये भी सुन लीजिए। इसमें आपको काफी हद तक मिलेगा, इतनी डिटेल्स नहीं, लेकिन आपको कम से कम इतना पता चल जाएगा कि नबी सल्लम अपनी बीवियों से पीरियड्स में खाना पीना बातचीत करना साथ सोना किसी चीज से नहीं रुकते थे। हत्ता कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी मेरी गोद में सर रख के कुरान पढ़ रहे होते थे और मैं पीरियड से होती थी, नो प्रॉब्लम। अल्लाह के नबी हजरत आयशा का जूठा पीते थे, ग्लास में जिधर आपके होंठ लगे थे आपको जब पेश करती तो उसको घुमा के वहां से पीते, कहती मैं पीरियड से होती थी। हड्डी चूसती और हड्डी चूसने के बाद वो नबी को देती और नबी उसी जगह से हड्डी को चूसते, तो औरत नापाक नहीं। एक मौके पे आपने हजरत आयशा से कहा कि जाओ जाए नमाज लेके आओ उधर से कुछ मसल्ला या कोई चीज, तो अल्लाह के नबी मैं पीरियड से हूँ, तो कहा कि हैस तेरे हाथों में नहीं है, मोमिन तो नजस नहीं होता, ठीक है। तो लिहाजा इस टर्म में सिर्फ और सिर्फ एक खास ताल्लुक की तरफ इशारा, और वो भी देखिए औरत को तकलीफ से बचाने के लिए। और इसमें और बहुत सारी बातें हैं, दुख तकलीफ की बात है कि बाज लोग कहते हैं कि यही तो दिन है कि जिसमें फिर आपको फैमिली प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ती, कितना बड़ा जुल्म है। अब इन बातों पे आप जाएंगे तो बहुत सारी बातें आएंगी। और यहां आप देखिए कि यहां एक बात जो कह के फातजिलु निसा फिल महीद, औरतों से हैज के दिनों में अलग हो जाओ। और साथ ही आप देखिए कि ऐसे लगता है कि अल्लाह सुबहाना ताला इस बात को आगे बढ़ा के कहते हैं वला तकरबूहुन्ना, उसी को तकरार से कर, देखो उनके करीब ना आना। कौन सी कुर्बत है? वही कुर्बत, कहां तक? हद तयत होना। अब यहां आप बिल्कुल आयतों पे नजरें जमाएंगे तो बात समझ आएगी, यहां तक कि वो पाक हो जाए। लिखिए पहले यत होना के ऊपर ब्लड खत्म हो जाए, ये फर्स्ट थिंग है। फिर सेकंड इजात तहरना, दोबारा क्यों कह दिया? बस जब वो पाक हो जाए तो दूसरे दोहर से मुराद उनका गुसल लेना। ये मसला भी थोड़ा सा मुतनाज़े है, जिसको आप कह लें कि मुख्तात राय तो यही है कि औरत और मर्द का जो खास ताल्लुक मना था वो पीरियड के ब्लड के खत्म होने के बाद से औरत के एक खास गुसल, जिसको गुसल जनाबत की एक माइन्यूट सी किस्म कहेंगे, उसके बाद जायज है। बस कहते हैं नहीं, ब्लड खत्म हो गया उसके बाद ताल्लुक कायम हो सकता है, बाद में गुसल किया जाए। लेकिन आप ये दोनों तो हुक्म बिल्कुल वाजे है कि जब औरत पाक भी हो जाए फिर उसके बाद गुसल कर ले, फातूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, फिर आओ उनके पास वहां से उस तरीके से जिस तरह तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दिया। अब ये फातूहुन्ना मैंने आज लफ्जी जहाद में खास तौर पे अमर की बहुत बात की, क्योंकि मुझे पता था कि इसमें अहकामात पे इसका असर पड़ेगा। देखने में क्या लगता है ये हुक्म है? फौरन आओ, जरूर करो, इजाजत है। उस ताल्लुक से जो रोक दिया था ना, अब करना चाहो तो कर लो, ये मतलब है। बस लोग इसकी गलत तावीलात करके फिर इस बात को जो ही औरत पाक हो कहते हैं अब ये फर्ज है, तो ये ऐसी कोई बात नहीं। इस्लाम किसी ऐसी गैर फितरी चीजों पे नहीं लेके आता जो कि औरत के लिए यानी औरत और मर्द के लिए काबिले कबूल ना। यहां से लफ्ज़ मिन हैसु अमरकुमुल्लाहु को भी जरा समझ लीजिए, उनके पास आओ जैसे अल्लाह ने आने का हुक्म दिया। अब एक बात क्या है कि जैसे आने का दिया, अगले से पे चले फिर बात थोड़ी सी और होगी। ये हुक्म क्यों है? यानी इन दिनों में रुक जाओ, अलग हो जाओ, तकलीफ अजल, क्योंकि इन्नल्लाह युहिब्बुत तवाबीन, अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद करता है। मुराद है कि पिछली जिंदगी में अगर कोई ऐसी कमियां बेशियां हो गई, कोई बात नहीं, तौबा कर लो, अल्लाह माफ कर देगा। اور پچھلے گناہوں کا کفارہ یہی ہے کہ آئندہ انسان ان کاموں کو نہ دہرائے، اور ساتھ ہی ساتھ ویحب المتطہرین، وہ پاک رہنے والوں سے محبت بھی فرماتا ہے. گویا کہ یہاں عورت کے اور مرد کے پاک رہنے کی بات ہے. دیکھیے اسلام کیا ہے، الدین الفطرہ، فطرت کا دین ہے، صفائی نصف ایمان ہے، الطہور شطر الایمان. یہاں سے آپ دیکھیے پچھلے ہی دو سبق کے بیچ کے اندر ہم نے شراب اور جوئے کی بات کی، کل کے سبق میں ہوئی، وہاں شراب حرام تھی کر دیتی ہے، میسر جوا حرام تھا کیونکہ وہ انسان کے مال اور مزاج کو گندا کرتا ہے. آج پیریڈز کے ناطے سے اس حکم کی علت کیا ہے کہ اسلام نہیں چاہتا تم گندے رہو. صاف ستھرا انسان پاک، پاک ہونے کے دو طریقے، ایک تو توبہ توابین، پچھلی زندگی کے گناہوں پہ شرمسار اور آئندہ کے لیے آگے چلتے جاؤ، اللہ تعالیٰ مدد کر دے گا تمہاری. اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو جسمانی طور پہ پاک رکھو. یہاں سے ان معاملات میں بھی اور انسان کی پرسنل ہائیجین کی طرف اشارہ ملتا ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہم ظاہر بڑے چمکتے چمکتے لشکتے پشکتے ہیں، خوب اچھی خوشبو کا بو آئی تو پرفیوم تیز کر لیا، رنگ ذرا پیلا ہوا تو رنگ زیادہ لگا لیا چہرے پہ، یہ ظاہرداری ہوتی ہے. اسلام بندے کو اندر سے پاک کرتا ہے. ہم ڈرائنگ روم بہت اچھا صاف رکھتے ہیں کیونکہ مہمانوں نے آنا ہے، ہمارے کچن کا کیا حال ہے؟ کچن بھی ظاہر بڑا اچھا ہے سامنے کیبنٹ پہ، لیکن اندر کی الماریوں کا کیا حال ہے؟ یہاں سے دیکھیے آپ اگر اپنے ذہن کو متوازن اور خوبصورت رکھنا چاہتے ہیں نا، تو آپ کو سب سے پہلے اپنی پرسنل چیزوں کو صحیح کرنا پڑے گا. خلاف طبیعت جو بال ہوتے ہیں جسم میں، انوانٹیڈ ہیئرز ہیں، انڈر آرمز ہیں، انڈر لیگز ہیں، 40 days اس کی حد ہے، اس سے کم میں اس کو ختم کر دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ اس کے ذریعے گندگی ہوتی ہے. اس کا پیریڈز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے ہاں آواز نہیں شروع ہو رہی کیوں؟ وہ ہم صفائی نہیں کر سکے، یہ کوئی بات نہیں ہے. یہ ہمارے بڑے بزرگوں سے جو ہم نے چیزیں سنی اسی کو چلتے آ رہے ہیں. کچھ چیزیں ہمارے اندر آج موجود ہیں ایسی، تو اس کو نکال دیجئے. ویسے ہی کوئی حساب رکھ لیں اپنا، ہر ہفتے میں، ہفتے کے بعد، 2 ہفتے میں. اور اگر آپ عادت بنانے کے لیے پیریڈز کے بعد کرتے ہیں نو پرابلم، لیکن یہ کہنا ہے کہ اب نماز نہیں پڑھ سکتی جب تک کہ یہ نہیں کر سکے، یہ چیز درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح آپ دیکھیے ہمارے ہاں ایک اور مت ہے کہ جن دنوں کے پہنے ہوئے کپڑے خراب ہیں. کئی عورتیں پارٹیوں میں نماز کیوں نہیں پڑھ رہے، کیوں؟ خیر ہے، نہیں کچھ مسئلہ نہیں، بس اس لیے کہ یہ کپڑے میں نے فلاں موقع پہ ان دنوں میں پہننے تھے، اب میں پہن نہیں سکتی، نماز نہیں پڑھتی. جھوٹ ہے. صرف وہ جگہ دھونی ہے جہاں بلڈ لگے، اور دھونے کے باوجود اگر سٹین نہیں جاتا، آج ہمارے پاس تو 100 قسم کے صابن ہیں. صاحب یار تو کہتی ہم کھرچتی تھی، پانی بھی نہیں ہوتا تھا، کپڑے پہ بلڈ لگتا، پھر ہم اس کو کھرچتی اور جب پورا کھرچا جاتا تو ہم اس کو یوز کرتی. پھر پانی سے دھو لیں، نشان نہیں بھی جاتا، پاک ہے، گندگی کا اثر نکل جائے، دیٹس اٹ. ہاں ایک اور مت بنی ہوئی ہے اس بارے میں کہ کپڑے میں پسینہ آ گیا تو پھر نہیں پڑھنی، ویسے پڑھ سکتے ہیں. کس کو اتنی مشکل میں اسلام ڈالے گا کہ چیک کرے کس لیول کا پسینہ آیا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ان دنوں میں جو دوپٹے سر پہ لیے ہیں وہ اب اس کو نہیں پڑھ کے نماز پڑھ سکتے. جھوٹ. بعض رضائیاں، بستر، چادریں سب دھو رہے ہوتے ہیں، آپ کی مرضی ہے دھو لیں، لیکن کیوں رکھے لے کہ اس کے ساتھ حکموں کا تعلق نہیں. ہر جگہ مسلمان اتنے پوش نہیں ہوتے جتنے آج ہم ہیں. ٹھیک ہے، تو اس بارے میں یہ ساری چیزیں الگ ہیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ جتنا پرسنلی اپنے آپ کو کلین رکھیں گے، آپ کی اپنی چیزیں ٹھیک ہوں گی، آپ کا ذہن بہت اچھا ہوگا، ذہن گندگی ہر چیز پاک ہوگی. اور توبہ کے ذریعے دل کا زنگ دور کر لیں، اور آپ کہہ لیں کہ پانی کے ذریعے طہارت کے ساتھ ہم گندگی کو ختم کریں. میں اور آپ اگر حقیقی مومن بننا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں اپنی اندر کھاتے کی چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. اس ویکینڈ پہ اپنے لیے یہ بات بنا لیں کہ میں نے اس ویک صرف وہ چیزیں اپنی ٹھیک کرنی ہے جو کسی کو نہیں دکھتی. آپ کی کیبنیٹس، آپ کے ڈراز، آپ کے انڈر گارمنٹس، آپ کی چیزیں تھوڑی رکھیں، صاف ستھری رکھیں، استعمال کی ختم، اس کو استعمال سے رکھیں. اور جب آپ غیر طاہر ہوتے ہیں تو نماز میں بھی دل نہیں لگتا، اور اسی طرح کی بہت ساری باتیں. اب یہاں تک بات واضح ہو گئی. اتنی بات کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو چند باتیں جو ہم سب کو فائدہ دیں گی اس ناطے سے. پہلی بات ہے کہ کچھ چیزیں حیض میں ممنوع ہیں، نہیں کر سکتے. وہ کون سی ہے؟ لسٹ بنا لیجیے. نمبر ایک، نماز نہیں، مگر اس کی قضا ہوگی. دوسری چیز، روزہ نہیں، لیکن اس کی قضا ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز, عورت طواف نہیں کر سکتی وہاں حج پہ, اللہ آپ کو لے جائے, عمرے کے لیے بھی لے جائے, آپ سب کچھ کریں گے لیکن خانہ کعبہ کی حد میں جا کر طواف نہیں کریں گے. رہ گئی سعی, تو سعی کے بارے میں اختلاف ہے. اگر سب کچھ کر چکے ابھی سعی صرف رہے, تو بعض علماء کہتے ہیں کہ عورت اپنے آپ کو پاک صاف کر کے اچھی طرح سمیٹ کے تو صرف سعی باہر سے جا کے کرے تو خیر کر سکتی ہے. بعض کہتے ہیں نہیں, آج سعی جو ہے تو سعی کی جگہ حج کی خانہ کعبہ کی باؤنڈری میں آ گئی تو نہیں کر سکتی, لیکن یہ ایک ڈفرینٹ ایشو ہے. لیکن بہرحال طواف نہیں کر سکتی. اگلی چیز جو ہے وہ عورت مسجد کے پریئنگ روم میں نہیں ٹھہر سکتی. دیکھیے, ایک ہے گزرنا اور ایک ہے ٹھہرنا, بہت فرق ہے. ایک ہے آپ گئے جلدی سے چیز لے کے آ گئے, گزرنا تھا. صحابیات کے تو گھر مسجد میں سے گزرتے تھے, ان کے پیچھے حجرے تھے. ٹھہر نہیں سکتی, یعنی جس کو آپ کہیں گے لٹرلی بیٹھنا, یہ نہیں. آپ لیکچر سننے گئے اور جا کے مسجد کے پریئنگ روم میں بیٹھ گئے. آپ نے تراوی پڑھنی کوئی نہیں تھی, جا کے اسی ہال میں براجمان ہے, اور جو ہی مولوی صاحب سوارہ پڑھتے ہیں پیچھے لڑکیاں بیٹھ کے باتیں شروع ہو جاتی ہیں, کئی ہاتھوں میں قرآن لے کے بیٹھی ہوتی ہیں, گلاس پہنے ہوتے ہیں. لیکن تو آج کل کی مسجدیں الحمدللہ آپ کو پتہ ہے پوری مسجدوں میں آواز آتی ہے. کوئی ڈائننگ ایریاز ہیں جہاں کھانا آپ کھاتے ہیں, کچن, بچوں کے کوئی سکول ہے, کوئی مدرسہ, جائیے. خاص طور پہ جو مردوں کا پریئنگ روم ہے اس میں تو بالکل بھی نہیں بیٹھنا چاہیے, کیونکہ وہ 5 وقت کے لیے نماز کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر اس کے بعد عورت قرآن کے الفاظ کو نہیں چھو سکتی. جیسے اب آپ دیکھیے کہ یہ سپارہ ہے ہمارے پاس, اس کو سمجھ لیں. اب اگر یہ ہے کسی کو سسٹر کو پیریڈز میں کھولنا پڑتا ہے, اس میں بہت کچھ ہے اردو, جس قرآن میں کہیں بھی قرآن کے علاوہ کچھ آ گیا, چاہے وہ ترجمہ ہے, لفظی ترجمہ ہے, حاشیہ یا تفسیر ہے, وہ قرآن نہیں رہتا, یا وہ ایک ہماری ہیلپنگ بک ہے. ٹھیک ہے. اس کو چھونے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو چھوئیں, لیکن میک شور یہ ہے کہ آپ نے اس کی عربی کے اوپر ہاتھ نہیں رکھنا, عربی میں نہیں ہاتھ آئے گا. دوسری چیز ہے وہ قرآن پاک جس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا سوائے قرآن کے, اس کو آپ کھلے ہاتھوں سے نہیں چھوئیں گے. اس کو لینے کے لیے یا گلوز یا کوئی ایک ایسی چیز, جیسے ایک شیلڈ ہوتی ہے کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے, آپ اس کے بیچ میں اس کو رکھ لیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ میں صرف دکھانے کے لیے رکھا ہوا تھا, یہ دیکھیں نا, جیسے اب یہ کور ہے, اب یہ ایک الگ کور ہے, اس کو اگر آپ اس طرح سے یوز کر کے سادہ قرآن کھولنے کے لیے ادھر سے پکڑتے ہیں, اٹس فائن. ٹھیک ہے. اب آپ اس کے ساتھ اندر سے کھولتے وقت جیسے بھی اس کو کر لیں گے, ٹھیک ہے. اور احتیاط ہے کہ ان دنوں میں آپ ترجمہ نہ قرآن پکڑ لیں ہاتھ میں. ٹھیک ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کو اس پہ چڑھائی دیا, جیسے آج کل چمڑے کی کھالیں ہیں اور لیدر کی بیگز ہیں, تو جو چیز مصحف کا حصہ بن گئی اس کو نہیں چھونا, اس کے اوپر ایک لینا ہے. ٹھیک ہے, بس اتنی سی بات ہے, باقی یہ سب کچھ آپ بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. پھر اگلی چیز اس میں وہی چیز ہے جس کو ابھی ہم نے پڑھا کہ عورت اور مرد کا خاص تعلق, اور اس کے علاوہ باقی تعلقات ہو سکتے ہیں. ایون اگر مرد کی شہوت کو ٹھنڈا کرنے کے لیے عورت باقی اس طریقے سے مرد کو ریلیکس کرنا چاہے تو بھی کر سکتی ہے. اس کے حوالے ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے جب کبھی ان دنوں میں فائدہ اٹھانا چاہتے تو ان کو کپڑے کا استعمال کہتے, اور اس کے بعد یعنی عورت کسی بھی اینگل سے مرد کو ریلیکس کر سکتی ہے جبکہ اس حد کے ٹوٹنے کا ڈر نہ ہو. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس کے اندر جو دوسری چیز آتی ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے کہ جب ایک عورت ان دنوں سے پاک ہو جاتی ہے تو اب آپ دیکھیے کہ اس کے لیے بالکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیا سائیکل شروع ہو گیا, اور اس کے بعد پھر اس کو مجھے ایسے فیل ہوتا ہے, یہ بات میں اب آپ کو کوئی اس کی نہیں بتانے لگی حدیث کی, میں سائیکولوجیکل بتا رہی ہوں. فطرت کا ایک اصول ہے نا کہ تھوڑا سا جب بندہ ایک چیز کا یوز ٹو ہو چکا ہوتا ہے تو اس میں روح ختم ہو جاتی ہے, بیچ میں ایک گیپ آ جاتا ہے نا, فطری طور پہ تھوڑی سی عورت دور ہے. کیا نماز نہ پڑھنے کو آپ فجر کے لیے سوتے رہنا کہیں گے؟ جی نماز نہیں پڑھنی تو بھائی دعائیں پڑھیں, زیادہ اہتمام کریں. جن دنوں میں آپ اس چیز میں ہیں سستی نکاہت اور شیطان سے بچنے کے لیے ذکر اذکار دعائیں یہ کثرت سے پڑھیں, کچھ منع نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ہائے درس میں آنے نہیں, وہاں مجھے نہیں جانا, میں پاک نہیں ہوں. پھر درس میں آنے کے لیے کیا ضرورت ہے پاک ہونے کی؟ بہت واضح, بیٹھنا, مغفر سننا, لیکچر سنیں, قرآن سنیں بہت سارا. اگر آپ کا دل نہیں مانتا آپ نہ پڑھیں, لیکن آپ سنیں تاکہ شیطان کو آپ پہ قابو نہ آئے. اور دوسرا یہ کہ اتنے دن کے ریلیکسیشن کے بعد جب نماز شروع کریں نا, ایک چھوٹی سی بتا رہی ہوں, یہ صرف میری بات بتانے لگی ہوں, اس کو کوئی حدیث یا سنت نہ لکھے گا, کوئی نیکی کی نیت کریں, एक नया दौर है ना, जैसे हम कहते हैं कि न्यू स्टार्ट, जैसे आप नया पारा शुरू करते हैं तो फीलिंग आती है ना, चले इस पारे के बाद ये करूंगी, तो हर दफा इन दिनों के बाद कोई अच्छी सी नेकी करें, कोई और सोचे चले मैं एक आयत याद करूंगी, या मैं कोई कुरान को अब जरा और अच्छी तरह पढ़ूंगी, या कोई भी, यानी जस्ट टू मेक अ न्यू हैबिट, इस तरह से करते हैं। अब ये बात कर दी, इतनी बात काफी है अभी के लिए। इसके बाद अब क्या होता है, कहा निसाउकुम हर्सुल्लकुम, यहां से वो सहाबा का दूसरा सवाल था, यहां बता दिया कि तुम्हें अल्लाह ने, अल्लाह ताला यहां अभी तक समझ ले, कह लें कि अभी तक सिर्फ औरत और मर्द के ताल्लुक की बात थी, अब औरत का मुकाम क्या है घर में, क्या औरत पहुंची होती है, क्या औरत कोई सेक्स ऑब्जेक्ट है, क्या औरत को डेकोरेशन भी है कि मर्द की ख्वाहिश के लिए वो अल्लाह को भी नाराज कर दे। तो अल्लाह ताला कहते हैं आओ तुम्हें बताते हैं कि औरत क्या है, का निसाओ कुम हर सुल, तुम्हारे लिए खेती है, ये तुम्हारी खेतियां हैं, करो क्या, फतु हर सकुम, आओ अपनी खेती में, अन्ना शे तुम, जिस तरह चाहो। लफ्ज अन्ना को गौर से तर्जमा इसका सुन भी लें और लिख भी लें, क्योंकि इसके ऊपर एक बड़ा मसला लोगों ने खड़ा कर दिया जो पहले कभी नहीं हो सकता था, लेकिन जब ख्वाहिशों की का गलबा होता है ना, तो इंसान फिर इन चीजों में पड़ते हैं। देखिए लफ्ज अन्ना, अन्ना शे तुम, जहां से तुम चाहो, ये नहीं है जहां से नहीं है, जिस तरह से है, ये है वो लफ्ज जिसके ऊपर आज सवाल ओरल सेक्स का उठता है और एनल सेक्स का उठता है। कौमे लूत के ऊपर अल्लाह ताला का कलाम बार बार बात करता है, हदी कौमे लूत का फेल किया, यानी जो जगह अल्लाह ने रखी है उसके अलावा दूसरी जगह को इस्तेमाल किया तो वो मलून है। एक कौम जिस फेल पे तबाह बर्बाद कर दी गई थी, आज ख्वाहिशों के हरीस लोगों ने कुरान के हवाले दे दे के इस चीज को जायज कर दिया। तो लफ्ज अन्ना से मुराद जहां से नहीं है, जिस तरह से। देखिए कि जैसे मैंने तारुफ में बात थोड़ी सी शुरू में जिक्र कर दी थी कि फितरत ने बताया शौहर और बीवी का ताल्लुक कैसे होगा, आदम और हवा को किसी ने सिखाया नहीं था, फितरत का ताल्लुक था, ये ताल्लुक यही रहता अगर लोग शैतान के कहने पे गलत चीजें ना देखते। और मैं कह सकती हूँ कि ये 19वीं सेंचुरी के शुरू वाले हाफ में भी ये सवाल किसी के वेस्ट में भी तसव्वुर में नहीं था, इल्ला ये कि कुछ लोग जिनका तो मिजाज ही बिगड़ा हुआ है। लेकिन ये आखिरी जो हिस्सा गुजरा है ना 1950 से बाद, बल्कि मैं तो इसके भी आगे आऊं जो मेरे तक पहुंचा, हो सकता है जाहिर है कि जो दीन से ताल्लुक रखता है उनको इससे पहले भी आता होगा, अब ये मसला दिन ब दिन जड़ पकड़ता जा रहा है। और वो क्या है कि बीवी मर्द की खेती है, जो मर्जी करो, बीवी या उसको मारो, उसको कूटो, उसके साथ ताल्लुक रखो। तो आप देखिए कि पहले तो हम देख लेते हैं कि निसाकुम हर सुल्ला का क्या मतलब है, कि बीवी तुम्हारी खेती है, अब बस औरतें इस पे नाराज भी हो जाती हैं, देखो देखो मैं खेती का, तो आपको क्या कहें, चले आपको फिल्मों वालों ने क्या कहा कि आप चांद का टुकड़ा, लिखिए जरा लिखिए, आज का फिक्र को क्या पेश करता है, नंबर एक चांद, महबूब को चांद का टुकड़ा कह देते हैं लोग, नो प्रॉब्लम, और क्या कहते हैं, तितली बटरफ्लाई, ऐसे उड़ती उड़ती आती हैं और मर्दों के हाथों पे बैठती हैं, फिर अपना सारा रस दे के तो चली जाती है, और क्या कहते हैं जी, फूल, ठीक है, और कोई आपको पता हो तो मुझे बता दे, मैं वो भी बोल देती हूँ। अब आप लिखिए, सिर्फ लफ्ज हर्स से अल्लाह सुब्हान तआला ने मर्द को यहां जिम्मेदार बनाया, किसान और उसकी खेती का आपस में क्या ताल्लुक है। सबसे पहली चीज देखिए कि किसान को अपनी खेती बड़ी अजीज होती है, अगर आपने कभी गार्डनिंग की है या जो मर्द करते हैं गांव में देहातों में, उनसे पूछिए कि कहते हैं ना वो कि खेतों के लिए, जमीन के लिए जान जर और पता नहीं एक तीसरी क्या चीज है जिसके लिए लड़ाइयां तक हो जाती हैं, ठीक है। नंबर एक ये है कि खेत की कीमत हमेशा बढ़ती है, जमीन आज सस्ती है ना कल महंगी होगी, बाहर ये लगता है कि जवानी में औरत और मर्द का ताल्लुक ज्यादा अच्छा होता है और बड़े खुशियों के दिन है और चाओं के दिन है कहते हैं ना लोग, लेकिन हकीकत यह है कि जिस तरह खेत पुराना होता जाता है तो उसकी कीमत बढ़ती है ना, तो बीवी भी पुरानी होती जाए तो उसकी कीमत बढ़ती है, क्योंकि वो हर महीने उस पर 1,000 रुपए की दवाइयां भी तो लग रही हैं। सच्ची जो बात है, आप देखिए वो हमारे एक अल्लाह तआला उनको जन्नत नसीब करे, बड़े थे बुजुर्ग थे तो जौली थे बहुत, तो किसी जगह से शिक भी थी, तो मेरी वालदा ने उनसे पूछा कि मामू जी ये क्या, आपने गन रखी हुई है? कहते तुम्हें नहीं पता तुम्हारी मामी मेरे साथ है, और तुम्हें पता है एक शादी अब करूंगा, तो उस दौर की बात है, ऐसे कई साल पहले की बात है। कहते कई लाख रुपया लग जाएगा मेरा फिर, और दूसरी बात है हर महीने 1,000 रुपए की दवाइयां खाती है, तो मैं इसके लिए जरा गन साथ रखता हूँ। और हकीकत है, आप देखिए जवानी गुजर जाती है, बुढ़ापा नहीं गुजरता, और अल्लाह कभी किसी को तनहा ना करे, ना जवानी में ना बुढ़ापे में। लेकिन जवानी में बहुत सारे खिलौने पास होते हैं, बहलावे, दिल दिखावे, बच्चे हो ना हो, हों भी तो बच्चों, बच्चे ही औरत के खिलौने होते हैं, उसको पाल उसको देख पता भी नहीं चलता। लेकिन जब औरत के बच्चे बड़े हो गए, मर्द नहीं अकेली है, या ऑपोजिट भी, अब आप बताइए बच्चों की अपनी एक जिम्मेदारी है, बेटा है उसका, क्या उसके पास बैठा रहेगा? कल शादी करेगा तो किधर जाएगा? फिर बीवी के पास जाएगा तो एक और प्रॉब्लम शुरू, फिर सास बहू का झगड़ा शुरू। इसलिए अल्लाह ने फितरत पे किसी को नहीं रोका। बुढ़ापे में बीमारियां लग जाती हैं, धड़का ही लग जाता है मुझे रात को, हार्ट अटैक ही ना हो जाए, सांस ही ना मेरी उखड़ जाए। शोहर बीवी का ताल्लुक सिर्फ जिस्म का ताल्लुक नहीं होता, कंपनी, कंपेनियनशिप। और देखिए ये भी नहीं हो सकता कि फिर शोहर जी बीवी साथ ही मर जाए, ये पॉसिबल है? कभी शोहर पहले जाएगा, कभी बीवी जाते हैं। इस्लाम इस पे इतना ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मर्द तो अगर चौथे दिन भी दूसरी बीवी कर ले तो कोई हम में से उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। क्यों? अल्लाह ने हक दिए, तनहा बंदा किसी काम नहीं। और बीवी इद्दत के बाद, अगर आप इद्दत के अगले दिन किसी बीवी का औरत का निकाह होता देखें किसी दूसरे से, इट्स क्वाइटनेस। लेकिन आज हमने इसको हिंदुओं में क्या हुआ, अटूट रिश्ता, ये टूट ही नहीं सकता। शराबी पापी जवारी आ गया, जो भी आ गया उसको रहने ही रहना। हाँ? और दूसरी तरफ क्या कह देते हैं कि जी तुम्हारे इस घर से जनाजा ही जाए, या नीचे ऐसे भी अब तुमने पलटना नहीं। हमारे इंडो पाक कल्चर में इसको इतना मुश्किल कर दिया कि सारी जिंदगी की सती होती हैं औरतें, रोज जीती हैं रोज मरती हैं, लेकिन दूसरे निकाह का नाम नहीं लेती। लोग क्या कहेंगे, पहले बच्चे छोटे थे बड़े हो जाए, और अब बड़े हो गए तब उनसे शर्म, फिर उनके ससुराल से अब शर्म, अब दामादों से शर्म, अब बहुओं से शर्म। दिन ब दिन बच्चे आपके पास इतना वक्त नहीं दे सकेंगे। वो देते भी है ना तो वो एक आपकी मोहब्बत ही रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन वो फिर अपनी जिंदगियों को बार दफा खराब कर लेते हैं। बार दफा शौहर बीवी की सिर्फ इसलिए नहीं बनती कि शौहर जो है वो अपनी माँ को फिर एक्स्ट्रा टाइम दे रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला ने इसमें कहा कि तुम खेती की तरह हो, साथ रहते हो, कोई बात नहीं, अल्लाह का हुक्म है। सहाबियात, अल्लाह के नबी के अजवाज सिवाय एक बीवी के, हजरत आयशा के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई मुतल्लिका, ये तो इशू ही आज हम भूल गए। जुल्म की हद है, और बीमारियां लग जाती हैं, वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं लोग, अच्छे कपड़े नहीं पहन ले तो कोई नहीं खुश होने देता, ना पहने तो नहीं जीने देते। क्यों आप अपने आप को इतना हल्का करते हैं, लोग आपके लिए क्या करेंगे? एक बात, और यकीन करें कि ट्रेंड्स हमेशा अमल करने से बदलते हैं, इसलिए खेती की तरह औरत भी कीमती होती है वक्त के साथ। फिर आप देखिए कि इसमें अल्लाह सुब्हान तआला ने मर्द को कवाम बनाया है कि किसान अपनी खेती की हिफाजत करता है, टेक केयर करता है, उसको देखता है, उसके ऊपर मेहनत करता है। तो मर्द को बताया गया क्या, रिजालु कवामून अला निसा, मर्द औरतों पे कवाम है, तुम्हें काम करना पड़ेगा। औरत तो नहीं इस काबिल बनी कि वो काम करती फिरे और घर में भी काम करती फिरे, नेवर। अल्लाह ने एक फितरी निजाम रखा, करो। फिर आप देखिए कि इसमें मर्द को एक और एहसास दिया, किसान हमेशा अपने खेत को देख देख के मुस्कुराता है, खास तौर पे जब फसल उग रही होती है। मर्दों को बताया गया कि अपनी बीवियों को देख के खुश हुआ करो, और असल मोमिन मर्द अपनी ही बीवी को देख के खुश होते हैं, वो दूसरों को देख के नहीं खुश हो रहे होते, और घर आके तकाबुल करें कि वो ऐसी है तो तुम ऐसी क्यों नहीं है। फिर आप देखिए कि किसान अपनी खेती में आते हुए शर्माता नहीं है, चाबी जो आपके हाथ में, अब रात को आए दिन को आए आपको किसने रोकना। इस तरह मर्द अपनी बीवी के साथ रात को दिन को जब भी शरई तौर पे ताल्लुक कायम करे उसके साथ तो कोई बुरा मनाता है, कोई बात करता है किसी के क्यों गए? इसी तरह मर्द और औरत अकेले हैं, रात में गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, लोगों को कोई नहीं कहता। इसके बरक्स जब लड़के लड़कियां अकेले मिलते हैं तो हर वक्त धड़का ही लगा रहता होगा, अगर थोड़ी हजाब बाकी है कि कोई देख ना ले। ठीक है, फिर आप देखिए कि एक और तकाबुल, किसान को खेती से और फसल मिलती है تو مرد کو بیوی سے اولاد ملتی ہے. اسی لیے اللہ سبحان و تعالیٰ اگلے حکم میں کہتے ہیں, ابھی ہم اس پہ واپس آئیں گے, لیکن حکم آگے اللہ دیکھ لیں کہ جب یہ کہا کہ اپنی کھیتیوں میں آؤ, وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ, اور اپنے لیے آگے بھیجو, اپنے آگے کی تدبیر کرو. اب یہ قدموں کی ایک تفسیر جو وہ اولاد ہے, کہ بیوی کے پاس مرد کب آئے, جو آئے اس کا مقصد صرف لذت نہ ہو, حصول اولاد ہو. اس قدموں میں وہ سارے سسٹم جس میں عورت اور مرد کے تعلق کے باوجود اولاد کو نہیں پیدا ہونے دیا جاتا, وہ آ جاتے ہیں. یعنی اب کوئی کسان اپنی کھیتی کو بنجر نہیں کرتا, تو مرد اپنی بیوی کو کبھی بھی آپریٹ نہیں کرا سکتا. آپ گیپس لے سکتے ہیں, آپ اولاد کے لیے پلاننگ کر لیں, پھر بھی اللہ کے پلان آگے ہے, وہ اور بات ہے, لیکن آپ بالکل اپنی بیوی کو سٹرلائز نہیں کر سکتے. تو مراد ہے کہ اعتدال رکھو. یہ ایک مطلب ہے قدموا لانفسکم کا. دوسرا لفظ قدموا میں کیا ہے, کہ اعتدال رکھو. اب بیوی میں کھو کے ہر وقت انہی خیالوں میں نہ رہو, پڑھو نماز روزے کی طرف توجہ کرو. حنزلہ کی طرح کہ اگر بیوی کے پاس سے اٹھ کے میدان جنگ میں جا کے شہید ہونا پڑے تو ہو جاؤ. سنا ہوگا آپ نے واقعہ, اللہ کے نبی کو اپنی ساری بیویوں سے بڑی محبت تھی, لیکن عائشہ سے جو محبت تھی وہ فطرت میں تھی. اور آپ کہا کرتے کہ اللہ مجھے عائشہ کے معاملے میں نہ پوچھنا, میں اپنی حیثیت سے کرتا ہوں, لیکن مجھے یہ نہیں, پھر بھی میرا دل جھکتا ہے. اور فطرت ہے, ہر بندہ اپنے اخلاق اور مینر سے پیار لے لیتا ہے. اس کا اللہ کے نبی نے کیا توڑ کیا ہوا تھا آپ کو پتا؟ جس رات حضرت عائشہ کی باری ہوتی, آدھی رات کے بعد اللہ کے نبی جنت البقیع میں قبرستان میں چلے جاتے ہیں. یہ جو 15 شعبان کی روایت پیش کر کے لوگ شب رات پہ جا کے قبرستانوں میں جاتے ہیں نا, وہ یہ روایت ہے. کبھی موقع ہوگا تو بعد میں بات کریں گے. کیوں؟ کہتے تھے کہیں یہ محبت, یہ بیوی کا پیار مجھے اللہ سے دور نہ کر دے. آدھی رات بیوی کے پاس ہے تو آدھی رات جا کے عبادت کرتے تھے. یعنی یہ اشارے ہیں اس میں. تیسرا اس کا ایک معنی قدموں کا کیا ہے, کہ اولاد کی تربیت کی طرف ہی نظر کرو. یہ نہیں کہ بچے پیدا ہوئے اور ان کی تربیت نہ رکھو. اور پھر ایک اور بھی ہے کہ اپنے مستقبل کی بھی فکر کرو. اب آپ دیکھیے کہ یہاں یہ سارا شوہر اور بیوی کا تعلق, سچ بتائیں فلموں کے ڈائیلاگ ہوں, ناول یا ڈائجسٹوں کی باتیں ہوں, وہاں عورت کو جو کہتے ہیں اس کا اور اس ایک جملے کا کوئی تقابل ہے؟ میرا خیال ہے اگر آپ حقیقت سے اس چیز کو محسوس کریں تو آج آپ کو فخر ہو رہا ہوگا کہ اللہ تو نے مجھے کھیتی کا, میرا مرد ہے. پھر آپ دیکھیے اس میں اتنے خفیہ اشارے ہیں جو حدیثوں سے واضح ہوتے ہیں. کسان جب بیج ڈالتا ہے تو ایک دم جا کے مٹی میں نہیں ڈالتا, پہلے اس کو گودھتا ہے, نرم کرتا ہے, سافٹ کرتا ہے, پھر بیج ڈالتا ہے, پھر پانی دیتا ہے, پھر فصل اگتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ مرد اپنی بیوی کے پاس آئے تو ایسے ہی جانا چلا جائے, پر اس کو رام کرو, اس سے پیار محبت کی باتیں کرو, اس کا دل نرم ہو. یہ نہیں کہ تمہارے پاس سے سگریٹ کی بو آ رہی ہے اور تمہارے پاس سے پرسنل ہائیجین نہیں, اس کو کراہت آ رہی ہے اور تم اپنی خواہش پوری کرو. اب یہ باتیں کون بتائے گا؟ یہ کس کے حقوق ہے؟ یہ ویمن رائٹس ہے. یہ تو باتیں ماں باپ بھی نہیں داماد کو سکھاتے کہ میری بیٹی کا ایسے خیال رکھنا. پہلے اس کے ساتھ محبت کا تعلق رکھو, پھر اس طرح بات کرو. چلیے آپ نے اور ہم نے ابھی چند باتیں سوچی تھی تو اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. لوگوں نے کہا چاند, اب آپ بتائیے, مان لیا کہ آپ چاند کا ٹکڑا ہے. بہت ساری عورتوں کو شوق بھی ہوتا ہے کہ ان کو چاند کا ٹکڑا کہہ دے. چاند کیا ہے؟ جو مرضی رات جاتا اس کو دیکھ لے. چاند کی خوبصورتی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی محنت کرنی پڑتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. تتلی کہہ لے, کیا تتلی کے حسن سے فائدہ اٹھانے کے لیے کسی کو کچھ محنت کرنی پڑتی ہے؟ اور پھول کی خوبصورتی اور خوشبو سونگھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے؟ یہ ہے ویسٹرن کلچر. آج جس ہمارے تو گاؤں کی فلموں میں بھی یہ چیزیں آپ کو دکھیں گی, آپ ویسٹ کی انگریزی فلموں کی تو بات ہی نہیں کر رہے. انہوں نے عورت کو اس طرح کر کے اصل میں عورت اور مرد کے تعلق کو ڈیمولش کر دیا. جوانی دیوانی آیا بھمرا, گھاٹ گھاٹ گیا, اس کا پھول چوس, اس کا رس چوس, اور اس کے بعد دیکھیے 4 بچے ہیں عورت کے پاس, شوہر کوئی نہیں ہے. آج جو سوسائٹی میں پسی بھی عورت ہے اس کی وجہ کہ عورت کو اس نے تتلی سمجھا, اچھلتی ہیں, کودتی ہیں, ناچتی ہیں, پھدکتی ہیں, کچھ دن خوش کیا ان کو, اس کے ساتھ خوش رہی, دل بھر گیا, چلے گئے. حارث کھیتی والا چھوڑ سکتے اپنی کھیتی کو؟ اسی لیے اسلام نے آگے ہم پڑھنے والے ہیں جو نکاح کے توڑنے کے جو مرحلے رکھے ہیں اس کے اندر اتنی شدت کیوں ہے؟ नहीं तोड़ सकते। करने से पहले भी सोचो, तुम खुद लड़की को निकाह का पैगाम नहीं दे सकते। उसके बाप को बुलाओ, वो नहीं है तो भाई से बात करो, वो ना कहता है तो जाओ फिर छुट्टी करो। तुम उनकी बेटी हो, उसने पाला है, लेकिन उधर हाल क्या है कि सारी उम्र की लड़कियां जो बाप के आगे बोली नहीं होती, भाई के आगे बोली नहीं होती, वो एक अनजान अजनबी के नाम पे उसके साथ भागी जाती हैं। बात करना तो दूर की बात है, सारी इज्जत मिट्टी में डाल के चली गई घर से। अब देखो जो हमारे साथ होता है। एक तरफ तो निकाह इतना आसान कर दिया आज, और वो भी अगर निकाह करें ना करें तो उसके ऊपर भी कोई ना रोके। इसी तरह आज शादी, यकीन करें लाशौरी तौर पे, ये मेरी बदगुमानी कह लें, अल्लाह मुझे भी माफ करे, लाशौरी तौर शादी की खबर मिलती है ना तो धड़का लग जाता है कि 3-4 माह बाद कभी पूछे क्या हाल है लड़के लड़की का, तो मेरे दिल में खौफ है। मैं आपको अपने दिल की आज अंदर की बात बताती हूँ। मंगनी हो जाए सब खुश हो होते हैं ना, तो मेरा दिल आगे का सोच रहा होता है अल्लाह 5-6 माह बाद सब खैर ही हो। इतनी कसरत से मंगनियां टूट रही हैं, शादियां टूट रही हैं, और सडन ऐसे अचानक धमाके होते हैं फिर दिमागों पे कि नहीं वो तो लड़की अब घर भी आ चुकी है, अभी शादी का सामान नहीं पूरा खुला, लड़की घर है। खैर फितरी बात है, अल्लाह ताला कहता है कि वत्तकुल्ला, यहां देखिए अब कैसे ताल्लुकात हैं और उसमें तकवा की बातें। अल्लाह के खौफ के बगैर रिश्ते नहीं जुड़ते। वालम अन्नकुम मुलाकू, और जान लो कि बेशक तुम उससे मुलाकात करने वाले हो। वबशिरिल मोमिनीन, और खुशखबरी दे दो ईमान वालों को। ये कौन से मोमिन है? नमाज रोजे वाले नहीं, बीवियों को अच्छी तरह रखने वाले। अल्लाह के नबी के हदीस का खुलासा बताऊंगी, रेफरेंस इस वक्त मेरे सामने नहीं, लेकिन मैंने ये डॉक्टर फजल अली साहब की जुबान से सुनी हुई है बात, उनके रेफरेंस से जो बात पहुंची कि तुम अपनी बेटियों के निकाह मुत्तकियों से करो, तकवा वालों से। आज की जुबान में कहले मौलवियों से करो, अगर हम जरा थोड़ा सा नागवार महसूस कर ले तो। क्यों? कि अगर वो तुम्हारी बेटी को खुश नहीं रखेगा, मिसाल है चौ चौ नहीं कर सकता उसको, हर मौके पे फूल और गिफ्ट और वैलेंटाइन गिफ्ट, आज किधर जाएंगे और हनीमून नहीं, इन वो उस पे जुल्म नहीं करेगा। 100 दफा सोचेगा कि अगर आज मैंने इसका दिल तोड़ा तो कल को मेरा भी तोड़ेगा। वत्तकुल्लाह, और आप देखेंगे सूरह निसा में पहली ही आयत जो खुतबे निकाह में अल्लाह के नबी पढ़ते थे, 2 दफा तकवा का जिक्र है। तो एक तकवा होता है नमाज रोजे वाला, और एक तकवा होता है मामलात वाला। यहां मामलात वाला तकवा है, शौहर का हक, बीवी का हक, सास का हक, नंद का हक, और इंसानी रिश्तों की चक्की में कोई तुल नहीं सकता जब तक अल्लाह का खौफ ना हो। कोई घर नहीं बसता अगर अल्लाह का डर ना हो। जो इन मामलात में फिर सुरखरू हो जाएं, उनको कामयाब कह दो, उनको खुशखबरियां दे दो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम इन सारी बातों में जुड़ गए, चल गए, अब फायदा रखो। यहाँ पे आप देखिए कि एक किस्म का ये बात किनारे पे आती है कि किस तरह अल्लाह ताला ने ये बात करके हमारा जहन खोल दिया कि कैसा प्यारा रब है तुम्हारा जो तुम्हें इन ताल्लुकात की भी हदें सिखाता है। और अगर हम इस चीज को अपने सामने लेके चले तो इंशाल्लाह आप देखिए कि जिंदगियों में सुकून है। आप सब भी तो अपने घरों में देखते ही होंगे ना, कई लोगों के भी नानियां जिंदा है माशाल्लाह, दादियां भी जिंदा है, सासें भी जिंदा है, जाके पूछ ले। पहले दौर में घर ज्यादा अच्छे जुड़ते थे, टूटते थे, या आज? हालांकि आजकल तो फेसबुक भी है खैर से आपको जोड़ने वाली, ट्विटर भी आ गया, वाइबर, आजकल तो आप 100 किस्म के तरीके अख्तियार करें कि घर बसाने हैं। जाइए जो करना करके देख लें, घर नहीं बसते जब तक अल्लाह के हुक्मों पे नहीं चलेंगे। सीधे साधे लोग थे, यकीन करें हमारे बड़े खुद सुनाते थे, सहेलियों के साथ खेल रही थी कि लड़कियां आई, चलो चलो इधर, चलो चलो तैयार किया, नहा क्या दे, रिश्ता शादी हो रही है, निकाह हो रही है, कहती मुझे खबर ही नहीं मैं करके मेरे से हो क्या रहा है। और पकड़ के एक आई, उसने मुझे कपड़े का ये पहनो वो करो, उसने दूसरी ने लिपस्टिक लगा दी, लो जी निकाह हुआ, और नीचे वाले घर से ऊपर वाले घर आया कि घर शादी हो गई। नो क्वेश्चन, आज की औरतें तो लड़कियां फोन कर दें पुलिस को, पकड़ो पकड़ो ये माँ बाप हमारे दुश्मन बन गए। वल्लाह मजाक तो नहीं है, मजाक तो नहीं है। वो बच्चियां जिन्होंने माँ बाप ने उनको गोदों में रखा, जिनकी गंदगी दूर की, वो एक मिनट नहीं लगाती अपने माँ बाप के खिलाफ किसी दूसरे को कहते हुए कि ये हमें फोर्स करे। ठीक है इस्लाम नहीं कहता फोर्स मैरिज करो, वो भी आप पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह सूरह निसा में, लेकिन हमें देखना है कि हम कहाँ जा रहे हैं। फ़ईना तस्खबून, مسلمانوں کو امت وسط کو یہ مسئلے نہیں سوٹ کرتے. یہاں پھر بات کرتی ہوں کہ پیچھے امت وسط کی باتیں ہیں. آج آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس دین کا وقت کیوں نہیں. گھروں میں مسئلے بہت ہیں. شادی ہونے والی 6 مہینے پہلے سے تیاریاں, بچہ ہونے والا ہو گیا 9 مہینے سے تیاریاں. اب بچہ ہو گیا تو 1.25 مہینہ لڑکی گھر میں ہو گیا. اب ہر جمعے پہ ہر وقت ہم نے اپنی معاشرتی زندگی کو دماغوں پہ رکھا ہوا ہے, سچ کے جھوٹ. اس لیے اللہ کا کام نہیں ہم کر پاتے. کبھی آپ نے ایک جملہ اللہ کے نبی کی زندگی کے بارے میں سونیٹیوں کا باپ ہوں کیا کروں میں دین کے کاموں کو, کچھ کماؤں کچھ ان کے جہیز جوڑوں. دیکھیں 4 بیٹیوں سے 4 مسئلے بھی تو تھے نا, ایک کی شادی, ایک کی منگنی, ایک کا بچہ. آپ پڑھیں گے اللہ زندگی دے آپ کو, سیرت پڑھ کے دیکھیں گے اتنی موٹی موٹی کتابیں سیرت پہ 3-3 جلدوں کی ہیں. ایک کوشچن نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو کہ اللہ کے بندوں کبھی مجھے چھوڑ بھی دیا کرو, میں بھی ذرا اپنی بیٹی کی شادی کی فکر کروں, دیکھو میری بیٹی کا بچہ ہونے والا ہے اور میں کیسا باپ. اور آپ کی بیویاں چلے بیٹو ماں باپ تو ہو سکتے اتنے نہ انوالو ہوں, بیٹیاں بیویاں نو کوشچن. یہ جو دماغوں پہ آج ہمارے سوار ہے نا بھوت, نکال کے پھینکے. ابھی بچے اتنی ہے اس کا جہیز جمع شروع کرتے ہیں, کیوں دعا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ وہ آئے تو ان کا جہیز لے کے آئے. اسلام نے کبھی بھی عورت کے اوپر یہ بوجھ نہیں ڈالا جو, اور ہم چاہتے ہی ہیں کہ کریں طریقے اپنے. اور جب مردوں کو عادت پڑ جاتی ہے دامادوں کو کہ یہ تو گاڑی بھی ادھر سے آنی ہے تو گھر بھی ادھر سے آنا ہے, وہ جب 1 سال بعد آدھی ہوا وہ کہے گا جو لے کے آؤ ماں کے گھر سے 1 لاکھ پاؤنڈ, تو پھر کہیں گے ہائے ظلم ہو گیا, ہم نے تو یہ سوچا تھا یہ ہو گیا. خود خراب کرتے ہیں. میں ایسے دینداروں کو جانتی ہوں, وہ ایک وقت سے زیادہ کھانا نہیں کھلاتے اپنی بیٹیوں کو اور اپنے دامادوں کو. 10-15 سال بھی ہو جائے آج تک انہوں نے نہیں کہا کہ آؤ, ہم کہتے ہیں ٹکٹیں لے لو آ جاؤ اور جاؤ, کہتے خود چھوڑ کے جاؤ خود لے کے جاؤ. بڑا کوئی سبب بن گیا تو کوئی چھوڑ دے تو ٹھیک ہے, کہتے ہیں الرجال قوامون علی النساء, یہ مردوں کی ذمہ داری ہیں. اور یقین کریں کیسی ہوئی, پھر عورتوں کی عزت بھی بڑی ہے. ہم پہلے دمادوں کو پالتے, پھر ان کی ماؤں کو پالتے, پھر ان کی نندوں کو پالتے اور کرتے کراتے, اخیر وہ چھوٹی سی معصوم بچی رو دھو کے ہماری وہاں گزارتی ہے. کوئی 10 سال 5 سال گزر جائیں تو پھر میں کہتی ہوں اب انشاءاللہ گھر نہیں بجائے گا. اور میری دعا ہوتی ہے یقین کریں, آج کل جو بھی شادیاں تھیں میں کہتی لگ رہی جاتی ان کو اللہ بچے دے دے, کم از کم بچہ ایک بونڈنگ وے جب بن جاتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ بچوں والیاں بھی رلتی ہیں. بس دعا کرے کہ اللہ بے جوڑ رشتے نہ کروائے. اب اگلی آیتوں میں, ابھی تو ہم رشتے کی بات کر رہے ہیں نا, یہ تو تعلق تھا. اب یہاں سے آیت 224 سے آگے آپ دیکھیں گے رشتے ٹوٹنے کی باتیں ہو رہی ہیں. کوشچن بہت سارے ہوں گے ذہن میں لیکن لکھتے جائیں, ٹھیک ہے, ان پہ بات کریں گے اگر موقع ملا آج نہیں تو کل. ولا تجعلوا اللہ, اور نہ تم بناؤ کس کو, اللہ کو. کیا نہ بناؤ, اچھا یہ میں نے اللہ کو کیوں کہا, کوئی آپ میں سے جواب دے سکتا ہے؟ اللہ کو نہ بناؤ, یہ کیوں نہیں میں نے ترجمہ کر دیا کہ نہ بنائے اللہ. لفظ اللہ پر ہا زبر, اللہ ہا ہے اللہ ہو نہیں ہے. ہو ہوتا نا تو اللہ بنا رہا ہے نشانہ, اب ہم اللہ کو بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے. صرف یہ ایک ہلکی سی بات ہے جو آپ کے کانوں تک ٹکرا جائے تو بہتر ہے. اور نہ تم بناؤ اللہ کے نام کو یا اللہ کو اردت لی ایمانکم, ایک ایسی ڈھال اپنی قسموں کے لیے. کس بات کے ان تبرو, کہ تم کوئی نیکی کا کام کرو گے. اب اس کا ترجمہ بڑا ٹرکی ہے, غور سے سنیے گا. دیکھیے لفظ لا پہلے آیا نا, جو لا تجلو, اس لا کو آپ تبرو سے بھی پہلے, تتقو سے بھی پہلے اور تسلحو سے پہلے چھوٹا چھوٹا لکھ لے تو بات سمجھ آ جائے گی. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, ہم اردو میں بھی ایسے ہی بولتے ہیں, آپ یہ نہ کیجئے گا اور یہ بھی نہیں, ٹھیک ہے. تو یہ نہیں بار بار کہتے آپ کھانا بھی نہ کھائیے گا, آپ دودھ بھی نہ پیئے گا, یہ بھی نہ پیئے. ہم کیا کہتے ہیں, آپ کھانا دودھ پانی بالکل نہ لیجیے گا, ٹھیک ہے. تو لا شروع میں لگ گئی جو سب کے ساتھ فٹ ہو رہی ہے, کیونکہ ورنہ آپ گڑبڑ کریں گے کہ یہ کہاں لکھا ہے ترجمے میں, تو لا آ رہی ہے لیکن آیت میں نہیں ہے. تو کہا تو اپنی قسموں کے لیے اللہ کے نام کو ایسی ڈھال نہ بناؤ کہ تم فلاں نیکی کا کام نہیں کرو گے, و تتقو, اور فلاں برائی برائی سے نہ بچو گے, اور و تصلحو بین الناس, اور لوگوں کے درمیان صلح اور اصلاح کے کام نہیں کرو گے. اور یاد رکھو کہ والعلیم, اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. اب یہاں بات کر دی کہ اللہ کے نام کو نیکیوں سے رکنے کا ذریعہ نہ بناؤ. یہ کب ہوتا ہے؟ بعض دفعہ عرب جاہلیت کا طریقہ بتا دیتی ہوں کہ عرب جاہلیت میں ایک طریقہ تھا, ایک دستور تھا کہ اللہ کی قسم کھاتے, और कहते आज के बाद तो मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूंगा, और नेकी का नहीं। मिसाल है कि किसी का रिश्ता करवाया और वो रिश्ता उल्टा पड़ गया, देने पड़ गए, अब क्या हुआ, बातें सुननी पड़ी। होता है ना कभी ऐसा, तो जब रिश्ता कराया आपको उधर से भी बाद में बातें सुनी, इधर से भी, तो लोग कहते हैं ना, मैंने तो जी कसम खा ली आज के बाद मैं किसी का रिश्ता नहीं कराऊंगी, ये बात है, कैसा नहीं कह सकते, ठीक है। तो अल्लाह का नाम लेके कसम खाते हम ऐसे क्यों करें, ये है वो है, तो उस पे फिर अल्लाह ताला ने कहा कि नेकी से रुकना तो वैसे ही बड़ी बुरी बात है, राइट, और कहां आप उसको अल्लाह का नाम लेकर कहें, बात समझ आई, यानी काम अल्लाह का नाम लेकर ना करना। बस सब गुस्से में इंसान इस किस्म की कसमें खाता है। अब यहां से कसम की बात जो है ना, असल में कसम की इंतहाई किस्म तलाक पे जाएगी, आप समझ लें इसको। कसम क्या होती है, जुबान से भी और अमल से भी। यहां से तोड़ की बातें शुरू हो गई हैं जोड़ की बजाय, कि कभी किसी अच्छे काम से रुकने के लिए ऐसी कसमें खा लेते थे, ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, और इस तरह से वो रुक जाते थे। अब सवाल पैदा होता है कि कोई अगर ऐसी कसम खा चुका, आप में से भी कोई, मैं कसम खाती हूं मैं किसी का रिश्ता नहीं करवाऊंगी, या मैं कसम खा चुकी हूं कि आज के बाद मैं किसी के निकाह में नहीं जाऊंगी, कोई भी, तो क्या करें। तो हदीस क्या है कि कोई किस्म कसम खा चुके, कसम को तोड़ दे, कफारा दे दे, कफारा सातवें पारे के पहले, या एक गुलाम का आजाद कराना है, ठीक है। मत सिर्फ इशारा इधर एक जिक्र किया जा रहा है कि अल्लाह ज्यादा कस्में ना खाया करो, हदीस में आता है कि ज्यादा कस्में खाने से बेहतर है खामोश रहो, फल जस मत, चुप रहो, कसम खाओ तो सच्ची खाओ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ ये बात सिर्फ इशारतन थी, इस पे और कोई जरूरत नहीं है, असल बात आ गई है जिसकी ये किस्म की तमहीद है। अब क्या हुआ, और ऐसी ये कसम खाई थी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, आप सूरत नूर में वाकया पढ़ेंगे कि उन्हीं के खानदान के एक लड़के जिसको वो कफालत भी करते थे, मस्त तो उसका नाम था, मतलब उसकी टेक केयर करते थे माली तौर पे, उसी ने हजरत आयशा पे तोहमत लगा दी थी। तो हजरत अबू बकर ने कह दिया कि मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं मस्तों को कुछ नहीं दूंगा। तो फिर वो आयत उतरी कि क्या ला तो हिब्बू ना, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं कि यग़फिर अल्लाह, तुम्हें अल्लाह माफ कर दे। तो उन्होंने कहा जी अल्लाह मैं पसंद करता हूँ, फिर कसम तोड़ी, कफारा दिया, और मस्तों को जो देते थे वो दोबारा देना शुरू कर दिया। तो कभी भी इस किस्म की कोई बात हो तो खत्म हो गई। अब एक अगली सूरत, ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि फ़ी अयमानिकुम, अब दूसरी चीज, नहीं पकड़ेगा तुमको अल्लाह तुम्हारी ला यानी और लग़्व कस्मों पर। ये कौन सी कस्में होती हैं जिसको आप कह सकते हैं तकिए कलाम, इंग्लिश में क्या लोग कहते हैं, आई स्वेयर, आई बेट, कहना नहीं चाहिए बस। कोई कह तुम्हें कभी आप अरब लोगों से मिले, वल्लाही बिल्ला, वल्ला वल्लाही ओ मोहम्मद लाइक दिस, तो ये वल्ला बिल्ला जो है ना, ये लग्व है बगैर इरादे के, जैसे हम बोलते हैं तो बीच में कितने लफ्ज चूचा करते हैं। तो अल्लाह ताला, अब यहां से तलाक ही की बात है कि देखो बगैर इरादे के जो बातें हैं, जो कसम की बिल्कुल इंतहाई सिंपल बातें हैं, तो उस पर अल्लाह तुम्हें नहीं पकड़ेगा। देखिए ये अल्लाह की रहमत है, उसको पता है मेरा बंदा जो है वो बहुत कमजोर है, बोलता भी बहुत है, बेतुक्का भी बहुत बोलता है, आदत नहीं बनानी चाहिए, नापसंदीदा बात है। हदीस में आता है कि जो जितना झूठा होता है वो उतना अपनी बात को सच्चा करने के लिए कसमें खाता है, ठीक है। और यहाँ एग्जाम में बिर में से वो कसम के अदब आ रहे हैं, कोई सोच भी नहीं सकता इन मौजूआत पे बात करे अगर वो तफसील से और तरतीब से कुरान ना पढ़ रहा हो। और कसम में आप देखिए कि अहद की पाबंदी, वादों की पाबंदी पे तो इस्लाम पहले ही बहुत कुछ कहता है, ठीक है। तो किस पे पकड़ेगा, वला कि युआखिज़ुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम, तुम्हारी पकड़ तो उस पर होगी जो तुमने अपने दिल के इरादे से की थी, दिल में नियत थी किसी बात की, तो फिर है। अब सवाल पैदा होता है कि फिर कसम कौन सी ठीक है कौन सी नहीं, तो नोट कर लीजिए, कसम की एक सूरत कौन सी है जो अभी जिक्र होगी, बिल्लग़ भी लग़ कसमें, आदतन बगैर इरादे के कोई खा ले तो इस पे माफी है इंशाल्लाह, कोई पकड़ नहीं है, अगर वल्लाही बिल्लाही कह दें, अब ये नहीं कि अब इसके ऊपर कफारा। दूसरी कसम होती है इरादे से खाई, कोई भी इरादा आपने किया مثال ہے کہ آپ نے کہا کہ میں فلاں کے گھر اب کبھی نہیں جاؤں گی، میں قسم کھاتی ہوں، ارادہ تھا. اب کیا ہے؟ نمبر ایک یہ کہ ایسی قسم گناہ کی، نافرمانی کی نہیں کھانی چاہیے، قطع تعلقی کی نہیں کھانی. لیکن مثال ہے کہ میں کہتی ہوں کہ بھائی لیٹ سی، اگر میں کہ مثال ہے کہ دودھ ہے، مجھے لگتا ہے کہ دودھ سے موٹاپا ہوتا ہے، تو میں کہتی ہوں میں قسم کھاتی ہوں آج کے بعد میں دودھ نہیں پیوں گی. مثال ہے، سمجھ دے دیں. اب کیا کریں؟ ایسی قسم اگر کھائی ہے نا تو آپ اس کو توڑیں، توڑ سکتے ہیں اور کفارہ دے دیں، اس پہ گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تیسری قسم ہے جھوٹی قسم، یہ کبیرہ گناہ. جھوٹی قسم کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ کو پتا تھا میں نے یہ کام کوئی نہیں کرنا، پھر بھی قسم کھا لی. قسم کھاتے وقت بھی نیت نہیں تھی، صرف ظاہرن کر دی. اس قسم کو یمین غموس کہتے ہیں. یمین تو آپ کو پیچھے بتایا نا قسم، اور غموس کہتے ہیں ڈوبنے والی، غم میں گناہ میں ڈوبی ہوئی قسم. اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، کبیرہ گناہ، اور اس پہ صرف اور صرف اللہ سے معافی مانگنی ہے. باقی چیزیں آپ ساری انشاءاللہ سورۃ مائدہ میں قسم پہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو وہاں یہ بات آ جائے گی. اب یہ دونوں آیتیں جو تھی نا، یہ اگلی آیت کو کے لیے مینٹلی ہمیں پریپیئر کیا جا رہا ہے. للذین یولون من نسائہم، وہ لوگ جو اپنی ہی قسم کھا لیں. اب کیا ہے؟ تربص اربعۃ اشہر، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. اب اس 4 مہینے کے بعد کیا کرے؟ لکھے گا فائن فاؤ، اس عرصے کے دوران وہ رجوع کر لیں. یہ جو فاؤ کا لفظ ہے نا، اس کے نیچے لکھیے رجوع کریں. تو کیا ہوگا؟ فائن اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے، معاف کر دے گا تم کو، کوئی بات نہیں، ہو گئی بات. لیکن اگر 4 ماہ گزر گئے یا پھر اس کے دوران ہی وہ ان عزم الطلاق، آئے 227، اور اگر وہ طلاق ہی کی ٹھان لیں، عزم کر لیں کہ جی نہیں طلاق ہی دینی ہے، تو فائن اللہ سمیع علیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو خوب سنتا اور خوب جانتا ہے. یہ دو آیتیں ہیں جس کو ہم ایلا کی آیتیں کہتے ہیں، آیات ایلا. ایلا کیا ہوتا ہے؟ شوہر کا قسم کھا کر بیوی سے تعلق توڑنا، خاص طور پہ شوہر بیوی کا تعلق. دیکھیے کہ نکاح ہے قانونی رشتہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک قلبی رشتہ بھی ہے، اور قلب بدلتا رہتا ہے. کبھی بدمزگی ہو جاتی ہے، کبھی موڈ خراب ہے، اور اگر طبیعت میں غصہ ہو تو یہ غصہ انتہا کو پہنچ جاتا ہے، اور بعض دفعہ اس غصے میں زبان سے کچھ ایسے لفظ نکال دیتا ہے جس پہ اللہ کو گواہ بناتا ہے. اسی کی ایک قسم ایلا ہے. عرب جاہلی معاشرے کا رواج کیا تھا؟ کہ شوہر غصے میں آ کر قسم کھاتے کہ اپنی بیوی سے تعلق قائم نہیں رکھیں گے. اب کیا ہوتا؟ گویا کہ یہ قسم کی جاہلی معاشرے میں طلاق کی قسم تھی. اب جو ہی وہ قسم کھاتے، بیوی کا نان، نفقہ، اس کا کھانا پینا، سب حقوق سے پیچھے ہو جاتے. بالکل عورت ہاتھ پاؤں بندی ہوئی کل معلقہ والی کیفیت میں ہوتی، نہ ادھر کی نہ ادھر کی، اور یہ کرتے ہی رہتے، کوئی حد نہیں تھی. ٹھیک ہے، بیوی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر دیتے تھے. اب عورتیں بیچاری مجبور ہیں، نہ ان کے حق مل رہے ہیں نہ وہ آزاد ہیں. اسلام نے ان آیتوں میں مردوں کو باؤنڈ کر دیا، اونلی 4 منتھس. اگر ایک مرد اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ تعلق نہیں رکھوں گا، اور واقعی بھی تعلق توڑ دیتا ہے، 4 منتھس کے ود ان اس کو رجوع کرنا، تعلق قائم کرے گا، اٹس فائن، کوئی بات نہیں، ہو گیا، دل صاف ہو گئے. 4 ماہ گزر گئے، اب 2 میں سے 1 کام ہے، یا تو وہ خود طلاق دے دے، فین عزم الطلاق، اور اگر وہ طلاق نہیں دیتا تو عورت کو، عورت جب طلاق مانگتی ہے اس کو خلع کہتے ہیں، اور جب مرد دیتا ہے تو اس کو طلاق دیتے ہیں. یہاں ان آیتوں میں یہ بات کر کے بتا دیا کہ بیوی کھیل نہیں ہے، اور اگر 4 ماہ کے بعد مرد نہیں دیتا طلاق اور نہ رجوع کرتا ہے تو پھر عدالت اس کو مجبور کرے گی. اس کو پھر فسخ کہتے ہیں. یہ ساری کہانی آگے آپ کے سامنے کھلیں گی. इब्ने उमर कहते हैं कि 4 महीने के बाद भी अगर वो मर्द ना ताल्लुक रखता है ना तलाक देता है तो उसको कैद कर दिया जाएगा, यहां तक कि वो तलाक दे उसको। ठीक है, फिर यहां ये देखिए कि यहां अल्लाह की कसम खाना शर्त है। ऐसे नाराजगी नहीं कि जो मैं तुमसे नहीं बोलता, अब इस पे ये सारे अहकामात नहीं होंगे। देखिए, औरत और मर्द के निजी मामलात और अल्लाह सुबहाना तला की इतनी मुदाखलत, क्योंकि 4 माह के बाद अब ये मैटर में पर्सनल नहीं रहा। औरत नहीं बोल सकती, उसके घर वाले नहीं बोल सकते, लेकिन आसमान पे रब बोलता है। अब सवाल पैदा होता है कि 4 माह की हद औरत को दे दी, तो क्या अगर बगैर कसम खाए बाहमी मशवरे से शोहर बीवी ज्यादा या कम दूर रहते हैं तो क्या फिर भी तलाक हो जाएगी? तो ऐसा नहीं है, पसंदीदा तो बिल्कुल नहीं है। हजरत उमर ने अपने दौरे खिलाफत में गश्त के दौरान एक दिन एक रात को एक औरत के कुछ अशआर सुने जो अपने शोहर को मिस कर रही थी, और कुछ ऐसे अशआर थे कि जिसका खुलासा ये था कि अगर मुझे इस वक्त डर ना होता अल्लाह का तो मेरे पलंग के पाए हरकत में होते, यानी कि अपने शोहर के पास जाना चाहती थी। घर आए अपनी बेटी के पास, हजरत हफ्सा उनका नाम था रज़ियल्लाहु अन्हा, जो अज़वाजे मुतहरात में से भी थी। कहने लगे कि शरा में हक नहीं शर्माता, ये बताओ कि एक औरत अपने मर्द से कितनी देर दूर रह सकती है, यानी कब उसकी जरूरत महसूस करती है फिजिकली? तो उन्होंने कहा कि 4 माह। फौरन अगले दिन हजरत उमर ने कानून बनाया और मेंबर पे आके सबको बता दिया कि आज के बाद कोई मुजाहिद जो शादीशुदा है सरहदों की हिफाजत पे 4 माह से ज्यादा नहीं रह सकता, वापस लाओ उसको और दूसरा जाए। है कोई आपके ये हुकूक दिलाने वाला? 10 10 साल मर्द बाहर रहते हैं, दुबई गए हुए कमाने के लिए। आज का तो पता नहीं कौन सा ट्रेंड है, लेकिन जो मैंने सुना वह जब नया नया दुबई के वीजे खोले थे, हर घर का कोई मर्द बाहर है और बीवियां नुकरानियां बन के ससुराल वालों की खिदमत करती रहती हैं, और फिर जो मसले शुरू हो जाते हैं, माँ को ये कदर पट्टियां भी सास और बहू नंद की फिर सुनती हैं, पट्टियां पढ़ा के घर टुटवा जाते हैं। देखिए, घर मर्द के साथ है। आप सबको नसीहत करूंगी, अल्लाह आपको सबको तल्ख तजुर्बों से बचा के रखे। बेटी देते हैं तो इज्जत से दें। ससुराल का घर शौहर के साथ होता है। आज हमारे कल्चर में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम इज एक्सीलेंट अगर औरत के हकूक मिलते हैं, लेकिन ये जो औरतों को खिदमत के लिए छोड़ देते हैं ना, ये दुरुस्त नहीं। मैं ऐसे कल्चर को जानती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत करीबी है मेरे, अपने ही में से है। उसके उनके शादी हो के लड़की गई है ससुराल में, मर्द कभी जाते हैं ना काम के लिए, 1 हफ्ता 3 दिन 10 दिन बाहर चले गए, तो फौरन बीवी को मैके छोड़ के जाते हैं। ये तस्वुर है, वो कहते हैं नहीं नहीं बच्ची किसको कहेगी, यानी मैं नाम नहीं लेती ना, उनका लेती हूँ जिनसे हम सब ताल्लुक रखते हैं कि हमारे यहाँ तो ये कहो जी मियाँ गया तो बीवी भी चली गई, हाँ भी चली गई। बाज दफा घर में महरम ही कोई नहीं होता, दामाद देवर मौजूद हैं, जेठों के बच्चे मौजूद हैं, जेठ हैं, लेकिन लड़की को रहना पड़ता है, गैर इस्लामी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात करके अब अल्लाह सुब्हान तआला ने औरतों की हक को बुझा कर दिया कि तुम इसको रखो और इसके बाद फिर इस मामले को पीछे रखो। देखिए, दो लफ्जों की एक हदीस याद कर लें, ला दरर व ला दरार। आपने फरमाया ना तुम किसी को तकलीफ दो और ना किसी से तुम तकलीफ लो, सेफ्टी। ना तुम किसी को सताओ ना कोई तुम्हें सताए, ये तो पाँव की जूती बना लेना और उसको ये कह देना वो कर देना दुरुस्त नहीं है। और अब देखिए कि आखिर में जो अल्लाह सुबहाना तआला की सिफात आई है ना, वो भी काबिले गौर है। फ़इन्ना अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह गफूर रहीम है। कैसे? फा ऊ के बाद, यानी अगर शोहर रजू कर ले तो अल्लाह गफूर रहीम है, पीछे आया ना, अल्लाह माफ कर देगा, कोई बात नहीं, गुस्से में मर्द ने कह दिया। और आगे आप देखेंगे तलाक की सूरत में बात आएगी तो वहां समीउन अलीम आएगा, फर्क है कि अल्लाह सब के हालात को जानता है। अब इला के बाद जो तलाक होगी उसमें क्या इद्दत होगी? होगी, औरत फिर उसके बाद पूरी इद्दत करेगी। तरबुस का लफ्ज आया, किस चीज से रोके? दूसरे निकाह से रोके औरत अपने आप को। ठीक है, और उसके बाद अब आखिरी आयत है जो हमारे आज के सबक की, जो असल में आने वाले सबक का आप कह लें कि तारुफ है, उसमें अल्लाह ताला ने बता दिया तलाक नहीं बल्कि तलाक वालियों से तलाक का मौजू शुरू हो रहा है। पहली दफा यहाँ लफ्ज अब तलाक का आ रहा है अजमत तलाक के बाद। इसमें औरत के इद्दत की बात है, कुछ छूट गया?
जी थोड़ी सी मुझे ये वाजी नहीं हुई कि 4 माह के अंदर फिर रजू होके मतलब
फिर
सुलह
हालात नॉर्मल हो जाएंगे।
भी हो सकती है
जी, औरत साथ ही होती है,
सुलह भी
देख
हो सकती है
सब कुछ, रजू मीन सुलह ही होता है ना।
जी।
और हमारा माशर्ती सिस्टम गड़बड़ है, औरत 4 माह रहती कब है उस घर में, वो तो पहले मैके पहुंची होती है। आप ये मौजू आज जो शुरू होने लगा ना, आगे देखिएगा कि आप इसको पूरा सुन, एक एक धज्जी समझ आ जाएगी तलाक के मौजू की, जो मुश्किल तरीन टॉपिक समझा जाता है। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह का कलाम इतना खूबसूरत है कि सिर्फ लफ्जों पे रखूंगी आपको, और आप देखेंगे, और कल आपको दिखाऊंगी प्रेजेंटेशन में कुछ स्टेप्स कि तलाक होती क्या है। और जिसको बुलाना है बुला ले, यकीन करें, ये सिर्फ मौजू आम कर दें। जब भी ये लेक्चर हम करते हैं तो बाद में इतने साथी आते हैं, हाय मेरी तो फुलां फुलां की दोस्त बेटी, तो वो कहते हैं हमें इसका लेक्चर दे दें, इसकी सीडी दे दें। तो मैंने तो एक मौके पे ये भी कहा था, शायद पिछले साल जब हुआ था या कहा, कि आप जाएं इसकी दावा सीडी बना के बांटे, क्योंकि आज फी जमाना ये मौजू वेबसाइट पे आप चेक करके रखिएगा, कल फिर इनको रेकमेंड करेंगे। और वो फिर हमने बिल्कुल उसको स्टेप बाय स्टेप देखा था कि क्या है। बस इसका खुलासा कर लीजिए, वल मुतल्लकातु, और तलाक शुदा औरतें, यतरब्बसन बिअन्फुसिहिन्न, रोके रखें अपने आप को, कब तक, सलासता कुरूइन, 3 कुरू तक। कुरू क्या है, एक पीरियड से दूसरे पीरियड के बीच का वक्त, लिख लें, बाकी बात कल होगी, ठीक है। फिर इस दौरान क्या उनके लिए जायज नहीं, वला यहिल्लु लहुन्ना, नहीं है हलाल उनके लिए, किनके लिए, उन तलाक वाली औरतों के लिए, क्या नहीं हलाल, अय्यक्तुमना, कि वो छुपाएं, मा खलकल्लाहु, जो पैदा किया अल्लाह ने, कहाँ पैदा किया, फी अरहामिहिन्ना, उनके रहमों में। आप पॉइंट्स में साथ साथ ही तर्जमा लिखते जाएं, तलाक वाली औरत क्या करे, यानी इद्दत के मसाइल कह लें। नंबर एक, 3 महीने यानी 3 पीरियड्स तक औरत दूसरा निकाह नहीं करेगी, तरबुस में सिर्फ और सिर्फ दूसरा निकाह है। बेवगी और तलाक की इद्दत फर्क होती है, ठीक है। आगे बेवगी में आएगा तो वहां पर आराइश नहीं कर सकती, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती, घर से निकलने में पसंदीदगी नहीं दिखाई जाती। यहाँ तलाक में सिर्फ और सिर्फ यतरब्बसना में क्या है कि दूसरा निकाह नहीं कर सकती, ठीक है। दूसरी चीज औरत के ऊपर जो लाजिम है वो क्या है, कि वो पेट में अगर उसके कोई बच्चा है, यानी अगर इफ शी इज प्रेग्नेंट, तो प्रेगनेंसी छुपा नहीं सकती। क्यों, इस्लाम नसब की हिफाजत करता है। ये इद्दत के मकासिद बताए जा रहे हैं, कि इतना टाइम जो बीच में वेटिंग पीरियड है उसकी वजह मकसद क्या है, कि औरतें किसी का नसब दूसरे के साथ ना मिल जाए। और ये कौन करेगा, इन कुन्न युमिन्न बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर हैं वो औरतें अल्लाह और यौम आखिर पर ईमान रखती हैं। यदि अगर पहले किसी से आंख लगी हुई है कि इधर से जान छुड़ा के तब हमने उधर जानी है, तो यकीन करें औरतें इद्दत का भी इंतजार नहीं करती, दूसरी जगह शादी कर लेती हैं। ये हमने एक हकीकी वाकया कि इधर तलाक हुई और उसके कुछ दिन के बाद औरत दूसरी जगह शादी करके चली गई, और फिर बाद में वहां क्या हुआ ये एक अलग कहानी है। तो इस्लाम ने वेटिंग पीरियड दिया। सोचो इस 3 महीने में मर्द भी सोचे औरत भी सोचे, गुस्सा ठंडा हो जाए ये मकसद है, घर बचा रहे ये मकसद है, और अगर प्रेगनेंसी है तो 3 माह से ज्यादा पेट में बच्चा छुपता नहीं है, फिर ओपन हो ही जाता है कि शी इज प्रेगनेंट। अगर प्रेगनेंट होगी ना तो इद्दत वजह हमल है, ये आगे मसले आएंगे, इसलिए आप घबराए ना, ठीक है। अब क्या हुआ, वबूलतुहुन्न अहक्कु बिरद्दिहिन्न, उनके अपने ही शौहर ज्यादा हकदार है इनको लौटा लेने के। इस्लाम का मिजाज क्या, क्यों दूसरे घर में जाना है, वहां भी यही छोड़ के उधर जाओगे, ये खराबी नहीं होगी, इससे बड़ी होगी, इसकी ये बात बुरी लगती है तो दूसरे मर्द की दूसरी बुरी लगेगी, तो निभा करो। रुजू की तरफ इशारा है कि दूसरा घर बनने से पहले इसी को जोड़ दो, ये मतलब है। शर्त एक ही है, ए नरादु इस्लाहन, इस्लाह की नियत है। ये नहीं कि अब इस औरत को रोक लें ताकि अब और कसरे निकालें, जो जुल्म पहले नहीं कर सके अब कर लें। अच्छा, अब यहां तक बात हो के कहा, वलहुन्न मिस्लुल लज़ी अलैहिन्न बिल मारूफ, और इन औरतों के भी उसी तरह हकूक हैं जिस तरह के उनके ऊपर हक है। औरत को भी अल्लाह सुबहाना ताला ने हक दिया कि ये जितने अहकामात दिए जा रहे हैं इसमें देखो औरतों के लिए भी इसी तरह हकूक है मर्दों पर जिस तरह के हकूक मर्दों के औरतों पर है। ये है इक्वेलिटी की बेस। हालांकि लोग इस बराबरी पे लाके औरत को मर्द बना देते हैं, इस पे हम कल बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। وللرجال علیہن درجہ. ہاں مردوں کا بس ایک درجہ اوپر ہے, لکھ لیں یہاں. وہ کیا ہے؟ کہ مرد طلاق دے سکتا ہے, عورت دے نہیں سکتی, مانگ سکتی ہے. جملہ لکھ لیں کلیئر کٹ, عورت طلاق دے نہیں سکتی, مانگ سکتی ہے. آپ کہیں گے یہی تو ظلم ہے, یہی تو ہم کہتے ہیں عورتوں پہ ظلم ہے. کیوں نہیں دے سکتی بھائی عورت طلاق؟ آج سات اپنے مرد کو طلاق دے چکی ہوتی. عورتوں کے مزاج میں جذبات غالب ہوتے ہیں, جلد باز ہوتی ہیں, غصے میں بھی آ جاتی ہیں. اور اگر عورت کو بھی حق دیا ہوتا اور مرد کو بھی دیا ہوتا تو جتنے آج گھر ٹوٹتے ہیں اسے ڈبل ٹوٹتے نا. اللہ نے ایک کے ہاتھ میں مین پوائنٹ دے دیا اور دوسرے کو کہا کہ نبھا کرو. تو اور وجہ اگلی بھی یہ ہے کہ نکاح کی گرہ مرد نے باندھی تھی, نکاح پہ حق مہر مرد نے دیا, جہیز کے نام پہ گھر داری کا سارا سامان مرد لاتا ہے, مرد انویسٹ کرتا ہے نکاح پہ. اب آج ایک مرد نے سب پورا کر کرا کے کیا سب کچھ, عورت کو شادی دی, حق دے دے اس غریب کا تو نقصان ہو گیا نا. یہ آج ہم اپنے کلچر میں جب فٹ کرنا چاہتے ہیں نا ان چیزوں کو تو سمجھ نہیں آتی. ہمارے یہاں تو لڑکی والوں کا خرچہ ہوتا ہے نا, اسلام میں لڑکے والے کا ہوتا ہے. تو کہا کہ واللہ عزیز حکیم, اللہ غالب اور حکمت والا ہے. اب اس پوری آیت کو میں ایک سٹریچ میں پڑھتی ہوں تاکہ اس کا مفہوم کلیئر ہو. اور طلاق یافتہ عورتیں 3 پیریڈز تک اپنے آپ کو دوسرے نکاح سے روکیں, اور اگر وہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں کہ جو چیز اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کر دی ہے اس کو چھپائیں. اور طلاق دینے والے یعنی ان کے شوہر عدت کے اس مقررہ زمانے کے اندر انہیں اپنی زوجیتوں کے لیے بھی اسی طرح حقوق مردوں پر ہیں جس طرح کے حقوق مردوں کے عورتوں پر ہیں, کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے. ہاں البتہ مردوں کو عورتوں پر ایک خاص درجہ دیا گیا, اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ عزیز یعنی طاقتور ہے اور حکیم یعنی دانا ہے. مراد ہے کہ اس کا ہر حکم ہر قانون یعنی اس کا ہر حکم حکمت پر موجود ہے. چونکہ آگے ان طلاق کا موضوع آنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے طلاق والی عورتوں کے لیے جو حدود ہیں اس کا تذکرہ اسی آیت میں کر دیا. انشاء اللہ تعالیٰ کل آپ کو شروع میں ہم پہلے ایک سٹریچ میں طلاق کا طریقہ بتائیں گے اور پھر اس میں دوسری چیزوں کو لے کے چلیں گے, اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کریں گے کہ ہمارا ذہن کھول دے اور کامات جو ہر شادی شدہ جوڑے کو پتہ ہونے چاہیے. ہمارے ہاں اس موضوعات پہ کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا, اور جب یہ مسئلے پڑھتے ہیں تو اس وقت پھر ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ خیر کرے. کوئی کوئک کوشچن ہے تو پوچھ لیں اور تجوید کے لیے ریڈی ہو جائیں. ارم آپ آ جائیں. جی آپ پلیز. اور ایک منٹ, باقی ساتھی باتیں نہیں کریں اس وقت. جو آپ کے دل کی حالت ہے قرآن کی ان آیتوں کو سن کے وہ لکھیں. دیکھیں یہ وقت اتنا قیمتی ہے نا. میرا تو دل اس وقت اللہ کی محبت میں ڈوب رہا ہے کہ ایک عورت ہونے کے ناطے اس نے ہمیں کتنے زیادہ حقوق دیے ہیں. آپ بھی اپنی فیلنگز لکھیں, اسی سے آپ کا تعلق اللہ سے بنے گا. سسٹر اب بات کریں. جی میں سمجھ گئی آپ کی بات. ان کا سوال یہ ہے کہ بعض دفعہ قرآن کی کلاسز مسجدوں میں کنڈکٹ ہوتی ہیں تو کیا پھر عورت اپنے خاص دنوں کی وجہ سے وہاں بیٹھ کے سیکھ سکتی ہے کہ نہیں؟ تو پہلی بات دیکھیے کہ اس کے لیے آپ سب سے پہلے جب بھی کوئی مسجد ہو جہاں آپ کلاس شروع کریں تو اس چیز کو نظر میں رکھیں. اگر مسجد میں کوئی ایسا کمرہ ہے کہ جو ملٹی پرپز ہے اور ہوتے ہیں عموماً الحمدللہ, پھر وہ یوز کریں. دوسری صورت ہے کہ اگر ایسا کوئی سچویشن نہیں, کلاس آپ کی وہاں ہونی ہی ہے, تو پھر اپنے بیٹھنے کے لیے کوئی ایسی جگہ ڈھونڈے کہ جو اس حصے سے الگ ہو. مثلاً آپ دیکھیے کہ شروع میں لابی سی ہوتی ہے, تھوڑا سا جوتوں کا حصہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر آخری جو صورت ہو جاتی ہے, آپ دیکھیے کہ جو مردوں کا پریئنگ روم ہوتا ہے وہ تو 5 وقت پوری نماز کے لیے اس میں تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ چیز بہت زیادہ مسئلہ بنتی ہے, اور خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ آپ سننے والے نہیں, آپ کبھی کبھی سنانے والے بن کے بھی جاتے ہیں. اس چیز پہ اہتمام ہونا چاہیے. الحمدللہ عرب ملکوں میں آپ دیکھیں گے جتنی بھی مسجدیں ہیں وہاں اس چیز کا اہتمام موجود ہے, تو اوائڈ کرنا چاہیے جب مجبوراً اور خاص طور پہ ایسی وجہ سے کہ وہاں ضرور آپ جائیں, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اور یہ ایشو تب پھیلتا ہے کہ جب ہمارے ہاں مسجدوں کو بالکل ایک مسجد کے طور پہ رکھا جاتا ہے اور نہیں. اس کی میں نے ایک جگہ ایک چیز دیکھی تھی, واللہ عالم وہ کیسے ہے, ایک ہی ہال تھا, مسجد ہے ہمارے پاس ایک کسی شہر میں, تو مسجد پورے ہال میں اس طرح انہوں نے یہاں پہ ایک پردہ سا لگایا ہوا ہے, کچا پردہ سا, اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے ادھر والا جو حصہ ہے نا ہم نے نیت کی ہوئی ہے کہ یہ مسجد کا حصہ نہیں ہے, یعنی وہ ایک عورتوں کے یا ایسی ایکٹیویٹیز ہے, تو پھر اس مسجد کا کوئی ایک ایسا کونا پھر اس میں مسجد کی حد نہیں ہوگی. تو بہرحال یہ ڈیٹیل موضوع ہے, انشاءاللہ جب آپ کتاب و طہارہ میں یہ پڑھیں گے تو کچھ آپ کی مزید اس میں فائدہ ہوگا. جی ریڈی کریں آپ, صرف لسن کر لیں. جی پلیز کل کے بھی بتائیں, کل کا نہیں نکال لیں, سے پڑھ لیں. جی ایلا کے بعد طلاق جب ہوگی تو طلاق کے بعد عدت دوبارہ شروع ہوگی, 3 ماہ کی ہوتی ہے عدت. وہ اگر ضروری نہیں کہ 4 ماہ کے بعد طلاق دے, وہ تو پھر دیکھیں ورسٹ کنڈیشنز ہو جائیں گی نا, جس نے دینی ہے وہ 4 سے پہلے بھی دے سکتا ہے, 4 ایک حد ہے, اس سے پہلے آف کورس نہیں بن رہی, بات نہیں بن رہی, ایک جب اس نے طلاق کہہ دی تو پھر اس کے بعد سے عدت شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, چلیے جزاک اللہ خیر. جی آپ پلیز آپ ریڈی رکھو, بالکل کتنی پہلے
جو آؤٹ آپ نے بتایا کہ 3 ماہ تک نکاح نہیں کر سکتی یا پھر اگر آؤٹ ہم ہی رہتا ہوں.
جی جی بالکل, میں نے جو کہا مجھے یاد ہے, آپ سوال کریں. جی میں نے آپ کو ذکر کیا, یا تربسنا میں طلاق کی صورت میں صرف اور صرف دوسرے نکاح سے رکے گی, خوشبو استعمال کرنا یا باہر جانا یا کرنا, یہ اب کل آپ کو پتہ چلے گا نا کہ اسلام میں عدت کا جو وقت ہے نا وہ شوہر کے گھر میں گزرتا ہے, سمر کے بیٹھے گی تاکہ شوہر کے دل میں اور رغبت آئے. ٹھیک ہے چلیے, تجوید کے لیے ریڈی ہوں سب مل کے, بسم اللہ پڑھیں.
جزاکم اللہ خیر. کیسے اللہ, ہمارا لیسن بہت خوبصورت تھا, ہم نے دیکھا کہ آج اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتوں میں کس طرح ایکسپلین کیا ہے نا کہ عورت کی کتنی امپورٹنس ہے, کتنی عزت ہے. انشاءاللہ آپ کا جو یہ کوشچن ہے نا سسٹر منیبہ, تو یہ استاذہ کو فارورڈ کر دیں گے انشاءاللہ مزید. ٹھیک ہے, پھر انشاءاللہ وہ اس کا جواب دے دیں گے. ٹھیک ہے جی, الحمدللہ انشاءاللہ ٹائم چونکہ اوپر ہو چکا ہے, انشاءاللہ ہم اس کو یہیں پر اسٹاپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ کل جیسے بھی ٹائم ہوا تو پھر ہم ریکیپ بھی کریں گے. ٹھیک, چلیے جزاکم اللہ خیر کثیر. سبحان ربک رب العالمین, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, آمین یا رب العالمین. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم ارحمني بالقرآن واجعل
منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء